ണമോ ചെന്താണം ണമോ ആയിരം ണമോ കുംഭജാണം ണമോ ലോയേ സർവസാണം മോക്ഷമാർഗമസ്യ നേതാരം ദേതാരം കർണഭൂവ്രതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ സദ്ഗുണനദൈ വന്ദേ സദ്ഗുണനദൈ ത്രൈകാല്യം ദ്രവ്യഷട്കം നൗപദ്സഹിതം ജീവഷട്കായലേശ്യ പഞ്ചാന്നേ ചാസ്തികായാ വ്രതസമിതിഗതീയാനചാരിത്രവേദാ േതന്മോക്ഷമൂലം ത്രിഭുവനൈതൈർഹീശൈ പ്രത്യേതി ശ്രദ്ധാതി പ്രശതി ച മതിമാനയ സവൈശ്വരുദ്ധദൃശ്യുമാസ്വാമി ആചാര്യജി യഹ അനുപമ രചന തത്വാസൂത്ര നാമ ഗ്രന്ഥ ഹെ തത്വാസൂത്ര महाग्रंथ की रचना लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई। बहुत ही अनुपम चर्चा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है और अपने शब्दों में कहें तो कह सकते हैं सुख के लिए है। माने जब हम कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए है तो लगता है यार जिसको सम्यक दर्शन करना हो उसके लिए होगी, हमें क्या करना है सम्यक दर्शन करके। और जब हम शब्द बदल करके बात करते हैं और कहते हैं यह चर्चा सम्यक दर्शन के लिए नहीं, यह चर्चा तो सुखी होने के लिए है, तो फिर लगता है सुखी होने के लिए मुझे चाहिए। माने जब सम्यक दर्शन की बात कही जाए तो इसे जचती नहीं है और जब सुखी होने की बात की जाए तो इसको समझ में आती है। भाई साहब ये तत्वार सूत्र की चर्चाएं मात्र सुखी होने के लिए नहीं है, ये परम सुखी होने के लिए है, ये पूर्ण सुखी होने के लिए है। क्योंकि ये तत्वार सूत्र महाग्रंथ वक्त बने रहने की नहीं भगवान बनने की बात से प्रारंभ होता है। वंदे सद्गुण लब्धये की भावना से जिस ग्रंथ का प्रारंभ हुआ हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहकर के मुक्ति प्राप्त करने की बात जिस ग्रंथ में कही गई हो, मुक्ति माने स्वाधीनता और स्वाधीनता माने सर्वोत्कृष्ट सुख। जहाँ पराधीनता है वहाँ सुख है और जहाँ स्वाधीनता है वहाँ सुख है, आपको क्या चाहिए, स्वाधीनता या पराधीनता? स्वाधीनता चाहिए। दुनिया का हर व्यक्ति स्वाधीनता चाहता है और जहाँ परतंत्रता होती है वहाँ सुख होता है। पराधीन स्वप्ने सुख नाही, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। और आचार्य उमा स्वामी यहाँ कहते हैं हम ऐसी मुक्ति की चर्चा करेंगे जहाँ रंग के मात्र भी पराधीनता नहीं है। अरे कई लोगों और परिस्थितियों की पराधीनता तो है ही नहीं, देह की पराधीनता भी जहाँ नहीं हो, उस मुक्ति की बात हम करेंगे। उस मुक्ति का मार्ग क्या है, उस मुक्ति का रास्ता क्या है, वो मुक्ति कौन सी अवस्था का नाम है, वो कौन सी जगह का नाम है, वो मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई जगह है जैसे मयामी है, अवस्था है, आत्मा की एक अवस्था है, पूर्ण शुद्ध अवस्था है। वर्तमान में हम सभी जो आत्मा है ये हमारी अवस्था अशुद्ध दिखाई देती है और जब ये अशुद्ध अवस्था बदलते हुए और अधिक अशुद्ध होना बंद हो गए और शुद्ध होना प्रारंभ हो गए और शुद्धता बदलते 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 पूर्ण शुद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई और वह पूर्ण शुद्ध अवस्था जब कभी भी अशुद्धता में ना बदले, वो परमानेंट शुद्धता सभी अनंत काल के लिए शुद्ध अवस्था रूप रहे, उसका नाम है मुक्ति। और हमने सुना है एक बार जिनको मोक्ष हो जाता है फिर वो वापस लौट के नहीं आते, क्या ये बात सच्ची है? ये सच्ची बात है कि जिनको मोक्ष हो जाएगा वो लौट के नहीं आएंगे? कि हाँ बिल्कुल संसार में लौट के नहीं आएंगे, तो फिर साथ थोड़ा सा कोई ऑप्शन नहीं है? किसी को वहां पसंद नहीं आया तो, किसी को वहां जचा नहीं, किसी का मन नहीं लगा मोक्ष में, तो वो वापस आना क्या है? एक ऑप्शन तो होना चाहिए, कम से कम एक तो दिया जाना चाहिए। भले ही थोड़ा बहुत कुछ टैक्स वैक्स काटना हो तो काट लो, लेकिन रिफंड की पॉलिसी कुछ तो होनी चाहिए भाई। तो कहा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप इतनी तारीफ कर रहे हो, अब आप कह रहे हो इसलिए मोक्ष के मुकदमे में लग जाते हैं, बाकी हमारे को जैसे नहीं आए। अच्छा टीवी वगैरह तो मिलेगी है भाई साहब? मोक्ष में ना टीवी है ना बीवी है, दोनों नहीं है मोक्ष में, तो खाने पीने की ले लो वो भी नहीं है, तो और कुछ किसी तरह का आनंद मौज मस्ती कुछ तो होगा? नहीं भैया, जिन भौतिक सुखों की हमने कल्पना कर रखी है, इस तरह के भौतिक सुख वहां मोक्ष अवस्था में रंज मात्र नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेंगे हमारे को वहां मोक्ष में ऐसे सुख। तो आना चाहे तो बोले, जो व्यक्ति एक बार वहां चला जाता है वो आना चाहता ही नहीं है कि नहीं नहीं साहब आपको पता नहीं है, हमारा नेचर थोड़ा अलग प्रकार का है, हमें कोई चीज जचती नहीं है इतनी आसानी से, और नहीं जचेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो कहते हैं सुनो, मोक्ष का टिकट मिलने के पहले सब जांच पड़ताल हो जाती है, माने सम्यक दर्शन रूपी टिकट उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो व्यक्ति वहां जाने की लायकात रखते हो। ऐसा नहीं होता कि वहां जाकर के द्रवाघात करे और आकुलता और सबको डिस्टर्ब करे। मोक्ष वो ही लोग जा पाते हैं जो लोग पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख से विरक्त हो जाते हैं। अभी जिन्हें बाहर में सुख दिखता हो, अभी जिनको सुख बाहर में क्या कहें, बाहरी सुख तो ठीक है, बाहरी सुख से भी बढ़कर एक और सुख जगत में दिखने लगा है आजकल, जिसका नाम है काल्पनिक सुख, खामखा का सुख, जिसमें सुख नाम की चीज कुछ नहीं है। आपने कोई काम किया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया, लेकिन अभी ये क्या समझता है कि मजा तो तब आएगा जब मैं इसको फेसबुक पे डालूंगा, मजा तो तब आएगा जब लोग इसको देखेंगे। तो देखो, खुद के मजे से मतलब नहीं है क्या? खुद ने जो इंद्रिय जन्य विषय की बात करता हूँ, खुद को जो आनंद आया है, खुद को जो मजा आया है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको ये चाहिए कि मैं दूसरों को दिखाऊं, दूसरे मुझे देखे, और सच्चाई ये है कि दूसरे लोग रंच मात्र इसको देखना नहीं चाहते। किसी को इसके सुख से आनंद से मतलब नहीं है कि नहीं नहीं साहब पंडित जी ऐसी बात नहीं है, मैंने डाली थी मेरी फोटो फेसबुक पर तो आप मानोगे नहीं, कम से कम 300-400 लाइक मिले उस पर, इतने लोगों ने खत्म किया कि सुनो वो क्या करें कि पोस्ट की है इन्होंने, पंडित जी अपने जानते हैं तो चलो कोई बात नहीं लाइन दबा दो, बाकी किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जो थोड़ा सा जानकार और परिचित दिखाई देता है ना, वो फॉर्मेलिटी में उसके आगे लाइन दबा देता है, बाकी किसी को किसी की फोटोएं देखने से कोई मतलब नहीं है। रोजाना व्हाट्सएप पर 50-50-200 फोटोएं डालते हैं लोग, और हम डाउनलोड तक नहीं करते हैं, उनको डिलीट मार देते हैं। अब सोचना जरा क्या स्थिति है, क्या ये परम सत्य नहीं है कि एल्बम के पन्ने बदलते समय हमारी दृष्टि और हमारा हाथ उसी पेज पर रुक जाता है जहां हमारी फोटो होती है? हमें लगता है इसमें आनंद आएगा, इसमें सुख मिलेगा। भाई साहब सुख रंच मात्र भी नहीं है, गलत फहमी हो गई है आपको, भ्रम हो गया है बहुत बड़ा, आप धोखे में जी रहे हो। इसमें सुख नहीं है रंच मात्र भी, ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन जिन जीवों को होता है उसे आत्मिक सुख मिलता है, उसे अतिंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, उसे आत्मा का उस सच्चे सुख का अनुभव होता है जिस सच्चे सुख के अनुभव की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करे और अनंत काल तक उसमें स्थिर रहे तो निकलना नहीं चाहे। माने मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए ये सम्यक दर्शन रूपी टिकट मिलना आसान तो है, लेकिन उसके ही हाथ में मिल पाएगा जिसका श्रद्धान पहले मजबूत होगा, जिसका संसार अभी लंबा है, जिसे अनंत संसार में घूमना है, अभी जिसे विषय कषायों में रस आता है, आनंद आता है, जिसे क्षणिक आनंद में ही सुख दिखाई देता है, अरे भाई ये मोक्ष मार्ग की चर्चाएं उसके लिए। सच में हृदय की पवित्रता से कहता हूँ, बात अंदर में टटोल के देखना, अपने हृदय से जांच करके देखना, सम्यक दृष्टि यानी जीव विषय भोगता हुआ भी दिखाई दे रहे लेकिन अंदर से उसका रस टूट गया है। बात तो अंदर की है, ये सम्यक दर्शन चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, सबसे पहले सम्यक दर्शन कह करके उमा स्वामी आचार्य यही कहना चाहते, फिर सम्यक दर्शन की व्याख्या कह दी। तत्व अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं और उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति निसर्गज और अधिगमज ये दो प्रकार से होती है। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि बिना उपदेश के किसी को सम्यक दर्शन हो गया वो निसर्गज सम्यक दर्शन है, तो हमने कही थी जो जो निसर्गज होता है वो अधिगमज भी होता ही है, इसका मतलब पूर्व में देशना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले देशना ना मिली हो और उसको अभी स्वभाव से सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या अर्थ निकला सीधा सीधा सा कि पूर्व जन्मों में कभी न कभी इस जीव ने ये त्रिकाली ध्रुव आत्मा की चर्चा सुनी ही होगी। अब इसमें भी कोई ये कहे कि मेरे साथ कोई अपवाद तो हो ही सकते हैं, जिन जिन्होंने कभी नहीं सुनी हो कि नहीं ऐसा, ऐसे कोई अपवाद नहीं होते। और मैं एक बात कहता हूँ, तुम इस प्रकार का विकल्प क्यों करते हो कि बिना सुने हो जाए, तुम तो सुन ही रहे हो ना क्या? हमें ये परेशानी तो उन लोगों के पास है जिन्होंने सुनी नहीं हो, इस तरह की समस्या तो उस व्यक्ति के सामने होनी चाहिए जो व्यक्ति कभी जैन सेंटर में आया नहीं हो, और वो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सोचे और किसी से चर्चा नहीं करे और उसको भाव से होगा कि नहीं होगा, क्या यार हो जाना चाहिए, मैंने कभी सुना नहीं, तो ये प्रॉब्लम उसको होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सुने हुए ही जीव हैं। जितने जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, चाहे वर्तमान में सुना हुआ हो चाहे वर्तमान में नहीं सुनता दिखाई दे रहा हो, दोनों प्रकार के जीवों ने पिछले भूतकाल में अनंत बार ये तत्व की चर्चाएं सुनी, तो सुनी है तो काम क्यों नहीं हुआ कि सुनी है, यही तो कह रहा हूँ मैं, ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि स्वीकारिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुनी है। पिछले पांच दिनों से हमने इस बात को सुना है कि सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में होता है, आत्मा की अनुभूति पूर्वक होता है, बाहरी क्रियाओं का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, ये बात सुनी तो है लेकिन स्वीकारिता है, पॉइंट समझ में आ रहा है, बात तो अंदर से स्वीकार करने की है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये शब्द तो सुन दिए हमने, अंदर से स्वीकार होने की बात है, हृदय से यदि स्वीकार नहीं है तो सुनने मात्र से सम्यक दर्शन होता नहीं, सुनना कर्मेंद्री का विषय है, इससे काम नहीं चलेगा, सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत सुन लो, बहुत सुन लिया, बहुत बार सुना हमने, उससे सम्यक दर्शन होने वाला नहीं, सुने और सुनने के बाद में स्वीकार हो, समझे, निर्णय करे, भेद विज्ञान करे, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चले, तब जाके काम होता है भाई साहब, उसके बिना काम नहीं होता। तो कितनी बातें कह दी यहाँ, तब निसर्गज अधिगमज वा कह करके, निसर्गज और अधिगमज वा अथवा, फिर कहा जीवा जीवाश्रम समर निद्रा मोक्षा तत्व, इसकी भी कल हमने चर्चा कर ली थी आपके सामने, जीव अजीव आश्रम बंध समर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व कहे गए, सात में से एक भी कम होगा तो काम नहीं चलेगा, सातों कर्पल परी है कि आप सात से ज्यादा कर लो, फिर थोड़ा सा डिटेल भी करनी है तो, कि नहीं ज्यादा भी नहीं हो सकती, सात से कम भी पॉसिबल नहीं है और सात से ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है। बस ये जो सात की संख्या है, यह संख्या सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कही गई है। इसमें कम ज्यादा होने की संभावना रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए कहा ये सब तत्व हैं, तत्वम। तत्व की परिभाषा क्या थी? मैंने तत्व की परिभाषा भी बताई थी। बोलो कौन बोलेगा? उसका पना, वस्तु का स्वभाव। तत्व भाव तत्वम, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका तत्व है। तत्व किसे कहेंगे? जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका तत्व है। तो जो सात तत्व कहे हैं, ये सातों ही तत्व कोई न कोई किसी बात को इंडिकेट करते हैं, बस वो उनका स्वभाव है। और उनके स्वभाव को यदि हमने नहीं पहचाना तो सात तत्वों के संदर्भ में जीव भूल भी करता है बहुत बड़ी। अनादिकालीन मिथ्या मान्यता जिसे मिथ्या दर्शन कहा है, वो मिथ्या दर्शन सात तत्व संबंधी भूल का नाम है। क्या व्रत पूजा उपवास इन क्रियाओं के अंदर जो धर्म मान लिया, ये तो सब यहाँ से कमाया हुआ मिथ्या प्रेम। आ रही है बात? सच्चे देव के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में, जन्मानी के स्वरूप में, उनके भीतराशा के संदर्भ में, इनके संदर्भ में जो भ्रांति यहाँ आकर के नई हो गई, नया मिथ्यात्व, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो अग्रहित मिथ्यात्व क्या है जो आदिकाल से चला रहा है? ये शरीर ही मैं हूँ। और शरीर ही मैं हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि जीव और अजीव तत्व को एक दूसरे में मिक्स कर दिया। ये सात तत्व संबंधी भूल है, ये अनादिकाल से चली आ रही है भूल। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा में पहचाना। सबको जानता है, सबको पहचानता है, सबकी खबर रखता है, लेकिन अपने आप की खबर नहीं है। तो कैसा ज्ञानवान है तो अपने आप को ही नहीं पहचानता है। तो ये अपने आप की खबर नहीं है, हम क्या कहें तेरे बारे में बता? जो अपने आप को नहीं पहचानता हो उसे तो दुनिया में पागल कहते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, यहाँ तो मिथ्या दृष्टियों को पागल कहा है। देखो समूह रूप में आप गालियां भी देते हो, सब प्रेम से मुस्कुराते हुए सुन लेते। तो कॉमन कहते हो ना बात कि ये मिथ्या दृष्टि सब पागल है, सुन रहे मजे से। और फिर हम आपसे पूछेंगे आप कौन, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मुझे तो ये पड़ेगी मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ। तो क्या कहा था मिथ्या दृष्टि को अभी? क्या कह रहे हो? सच में पागल है, जिसे अपना नाम नहीं पता, जिसे अपना पता नहीं मालूम, जिसे अपना ठिकाना नहीं मालूम, उसे पागल नहीं कहूंगे तो क्या कहूंगे? सड़क पे घूमते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो जाए जिस व्यक्ति को अपना नाम गांव पता कुछ भी नहीं मालूम हो, तो आप उसे क्या कहोगे? पागल है। ठीक होंगे हमने कहा भाई साहब आपको आपका नाम पता मालूम है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, ये आत्मा कौन है, ये शरीर क्या है, जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, इन सातों तत्वों का क्या स्वरूप है, ये सातों तत्व कैसे भिन्न भिन्न है, इनकी खबर है कि नहीं? इनकी खबर तो नहीं है। बोले ये खबर जो नहीं है ये अनादि काल से नहीं, इसका नाम अग्रहित मिथ्या होता है। सात तत्व संबंधी भूल अग्रहित मिथ्यात्व है, महापाप है, बहुत बड़ा पाप है। हमें किसी की हिंसा करना तो पाप लगता है, हमें चोरी करना तो पाप लगता है, झूठ बोलना तो पाप लगता है, हमें गुस्सा करना तो पाप लगता है। हमने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया कि हमारे को पाप लगता है, बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, आपने क्रोध कर दिया था, आपने गुस्सा कर दिया, आप बिगड़ गए, हमें लगता है पाप है। लेकिन अंदर में जो पाप का बाप चल रहा है, पाप का दादा निश्चात है, उसकी खबर नहीं है हमारे। ऐसा कुछ दम नहीं है क्रोधाधिक में, क्रोधाधिक कषायों में सच में कुछ दम नहीं है। थोड़ी सी मंद कषाय दिखती है तो अपने आप दंड महसूस करता है, बहुत अच्छा मंद कषाय, कितने अच्छे परिणाम है अपने। सुनो ये पहचानो कि मंदता और तीव्रता तो अपने कालक्रम से ऑटोमेटिक होते रहते हैं। तुम चाह करके भी तीव्रता क्या ज्यादा नहीं कर सकते। तुम्हारे भले ही मन में आए कि अब तो मैं ऐसा करूंगा, अब तो मैं देखना, अब तो इतना गुस्सा करूंगा मैं, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगा, अब तो मैं ऐसा नहीं कर नहीं सकता। तुम्हारी ताकत नहीं, क्योंकि क्रोधा की कषाएं अपने आप मंद हो जाती है। ये स्वरूप है कषायों का। तो क्रोध अपने आप मंद हो जाता है, फिर क्रोध अपने आप तीव्र हो जाता है, फिर कषाएं अपने आप मंद तीव्र होती रहती है। जब मंद होती है तो तू अपने आप को धर्मात्मा समझ लेता है, तीव्र होती है तो अपने आप को पापी समझ लेता है। हम कह रहे हैं कषाएं तो दोनों है, आश्रव भाव है, गलत कहीं नहीं जी रहा है। तो क्या बात कही यहाँ उमा स्वामी आचार्य ने, भाई साहब सब तत्वों को बराबर का, सातों तत्वों का बराबर स्वरूप समझो। एक आप कैसे समझो बता, इन सात तत्वों का स्वरूप समझ रचनाधिक का स्वरूप। यदि मैं जानना चाहता हूँ तो कोई विधि है क्या आपके पास में? ये है, सुनो, इनका ध्यान कैसे करते हैं, आगामी सूत्र कहते हैं। पांच नंबर का सूत्र है, मैं बोलता हूं आप लोग रिपीट कीजिएगा, है ना। नाम स्थापना द्रव्य भाव तक कन्या सहित, नाम स्थापना द्रव्य भाव तक कन्या सहित, नाम स्थापना द्रव्य भाव सह, संन्यास है। जो क्या क्या होगा तो पढ़ेंगे ना अपन। तो नाम स्थापना द्रव्य भाव सह, आधा सह है ना, ये आधा सह डबल बिंदी हो गई, विसर्ग विसर्ग समझते हैं आप, मतलब ऐसी ऐसी दो बिंदी वो विकर्ण कहलाता है। तो नाम स्थापना द्रव्य और भाव, तो नाम स्थापना और द्रव्य भाव से तत्न्यास है, तत् माने वह, उन तत्वों का, उन पदार्थों का, उन वस्तुओं का जिनकी चर्चा की गई, तत्न्यास है। न्यास माने क्या होता है? न्यास माने होता है ज्ञान, न्यास माने ज्ञान करना। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, उपन्यास, उपन्यास क्या चीज, उप माने नजदीक और न्यास माने ज्ञान करना। तो उपन्यास किसी एक ऐसी पुस्तक का नाम है जिसमें किसी स्टोरी का बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से, बारीकी से, नजदीकी से ज्ञान कराया, उसका नाम है उपन्यास। उपन्यास होते हैं, पढ़े होंगे बहुत सारे लोगों को जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, उपन्यास पढ़ते हैं। अपने धार्मिक उपन्यास भी बहुत हैं, यदि किसी को पढ़ने का शौक हो तो, किसी को शौक हो कि हमें पढ़ना है। और लोग ऐसे होते हैं जो एक एक दिन में उपन्यास पूरे कर देते हैं। पहले तो एक जमाना ऐसा था जब किराए पर मिला करते थे, कॉमिक्स है, उपन्यास है, ये सब है। जो भी है, न्यास शब्द का अर्थ हुआ गहराई से ज्ञान। इन सात तत्वों का गहराई से ज्ञान करने की चार प्रकार से रीति बताई गई। क्या क्या नाम दिए उनके? चार निक्षेप भी कहते हैं इनको, शास्त्रों में आचार्यों ने इनके लिए चार निक्षेप शब्द का भी प्रयोग किया है। क्या है चार निक्षेप? नाम स्थापना द्रव्य और भाव। सुना आप लोगों ने इनके बारे में, जानते हैं चारों निक्षेपों के बारे में? नहीं जानते निक्षेप के बारे में? नहीं जानते आप लोग? चार है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। सबसे पहले तो आप इन चारों को याद कर लो, चार शब्द। सबसे पहला है नाम, स्थापना और भाव, ठीक है। अब नाम निक्षेप उसका नाम प्रश्न ये, तो नाम निक्षेप कैसे कहेंगे? शब्द से स्पष्ट, जैसे इनके शब्द दिए ना उन शब्दों से ये विषय अपने आप क्लियर हो जाता है। जैसे नाम, नाम मतलब नाउन, किसी भी वस्तु को पुकारने के लिए, काम चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए जो किसी भी सार्थक या निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बस वो उसका नाम है। नाम रख दिया गया जिसका नाम विजय हो, इसका मतलब वो तो हर जगह पर जीतेगा नहीं जीतेगा, और जिसका नाम भगवान धातु तो उसकी तो प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए मंदिर में। किसी का नाम महावीर हो, किसी का नाम बाहुबली हो, तो क्या वो बहुत ताकतवर होंगे? ऐसा तो नहीं। इस नाम में क्या दम है? ये नाम तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो ये नाम किस लिए था कि ये नाम गुण धर्म आदि की अपेक्षा ये था। नाम इसके पीछे चाहिए गुण धर्म स्वभाव योग्यता क्वालिटी, इन सब चीजों की अपेक्षा के बिना जब हम किसी को किसी शब्द से संबोधित करते हैं वो उसका नाम है, वो नाम निश्चित है। देखो हमारा नाम जन्म से तो नहीं, जन्म के बाद में नाम रखा सजा से हो सकता है। आपने ये भी कह देंगे कि मेरी फैमिली साहब हमारे यहाँ से नाम पहले से रखने थे, हॉस्पिटल में पहले ही मैं पहले से नाम लिखवा देते हैं, हमारे यहाँ से नक्की है पहले से ही। तो भी मैं कहूँगा कि गर्भ में आने के पहले से नहीं है तुम्हारा असली जन्म, तो गर्भ में आने का नाम है। तो ये नाम है ये बाद में रखा गया काम चलाने के लिए, इसका नाम है नाम निश्चित। इन नामों में कोई दम नहीं, लेकिन नामों के हिसाब से इतनी तन्मयता देखी जाती है कि किसी व्यक्ति का नाम समझ लो आप किसी अच्छे एक्टर से हो, हीरो से हो, सुपर स्टार से हो, है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से हो, फेमस व्यक्ति से मिलता जुलता हो, तो अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे मेरी बात। हमारा जो नाम है वो निरंतर है, कोई गुण धर्म नहीं। और ये नाम अभी हमारे से चाहते हुए पढ़ते पढ़ते किसी लाइन में बीच के पढ़ने में आ गया ना, तो मेरी बात चल रही है इतना ही मतलब खुश हो रहा है। जब तेरे से कुछ लेना देना नहीं है उसमें, वो तो इतना तक अनुभव करते हैं यहाँ तक कि शेरशंकर उन सबको अपने नाम से दिए हैं। नाम यदि शेरशंकरों के नाम से मिलते जुलते हैं और शेरशंकरों के नाम देख करके हमने बच्चों के नाम रख लिए हैं तो हमें वही शेरशंकर पसंद आते हैं। ऐसी तक घटनाएं घट जाती है कि लोग आग्रह पूर्वक प्रतिष्ठा करानी हो तो उन्हीं भगवान को चलाते हैं। किसी जगह पर जो भी चीज की स्थापना होनी हो और समझ लीजिए हमारा नाम शांतिनाथ है तो हम ये चाहेंगे कि हमारे लिए शांतिनाथ की मिले प्रतिमा विराजमान करने के लिए। चंद्र भानु भी मेरा नाम है तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्र पर भगवान मिले मेरे को, और पदम कुमार मेरा नाम है तो पदम पर भगवान मिले विराजमान करने के लिए। तो वो अपना थोड़ा सा लगाव है उसके प्रति, यहाँ सारा लगाव छुड़ाने के लिए जिन मंदिर में आते हैं और भगवान लगाव चढ़ाने की बात करते हैं और ये भगवान से लगाव कर लेते हैं, इतनी बड़ी अज्ञानता है। तो यहाँ नाम निश्चित के माध्यम से सिर्फ इतनी सी बात समझ लेना कि यह नाम सिर्फ निरर्थक है काम चलाने के लिए। किसी का नाम लक्ष्मीपति हो तो हो सकता है बंदी हो सकता, अमरचंद यदि किसी का नाम है तो वो तो कभी नहीं मरेंगे, ऐसा होगा कि नहीं? हमारे मरते हुए देखे जाते हैं, लक्ष्मीवान भीख मांगते हुए देखे जाते हैं, भगवान दास दरवे की ठोकरें खाते हुए दिखते हैं। तो क्या मतलब है नामों में? ये व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये तो बहुत मनहूस नाम है, नाम में कुछ दम नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे दिलो दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि महापुरुषों के नाम के ऊपर अपने घर के बच्चों के नाम हो। और यदि मैं कहूँ, किसी ने मेरे से पूछा कि साहब रैपर कोई अच्छा सा नाम बतलाओ ना बच्चे के लिए, मैंने कहा रावण रख लो, इच्छा भक्त हो। मैंने कहा बहुत बड़ा महापुरुष था। अरे पंडित जी कुछ तो सोचो यार आप। क्यों क्या हुआ? आपको नाम चाहिए ना, रावण नहीं हो सकता है क्या नाम? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, रावण के माँ बाप ने यदि जब उसका नाम रखा था रावण, तो अच्छा जान के रखा था कि खराब जान के रखा था? ये बताओ। अब क्या करें कि उस नाम का व्यक्ति खराब निकल गया? अभी मैं कहता हूँ यदि मेरा नाम संजीव है, अब यदि संजीव नाम का कोई व्यक्ति आतंकवादी हो जाता है और पूरी दुनिया में समझ लो आप उसकी डिमांड है, उसको तलाश रही है, अमेरिका गवर्नमेंट और न मालूम कितने देशों की सरकार उस डॉन को तलाश रही है, तो मुझे कैसे लगता है यार मेरा ही नाम होना था क्या ऐसा? माने हम कितना उस नाम के साथ में जुड़ान करने लगते हैं। हम यहाँ कहना चाह रहे हैं भैया, ये नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नाम कुछ भी हो। और हम बात करें आपसे, जब तीर्थंकरों के नामों की चर्चा की जाती है तो 1008 नामों से स्तुति करता है चौधरी, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी सोच इस प्रकार की बन गई है, हमारे देखने का नजरिया कुछ इस प्रकार का हो गया है। क्या करें? खैर, जिस वस्तु का जो नाम हो उसे उसी नाम से पुकारा जाना, ये नाम निक्षेप है। माने नाम निक्षेप कहकर के ये कहना चाहते हैं कि जब किसी वस्तुओं की चर्चा चल रही हो, पदार्थों की चर्चा चल रही हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आदि की चर्चा चल रही हो, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल छह द्रव्यों की चर्चा चल रही हो, तो सबसे पहले आप उनके सही सही नाम पहचानना। जब अब मैंने इतनी बात कही कि नाम में क्या फर्क पड़ता है, मैंने इतनी बात कही तो एक व्यक्ति सामने बोले, राजीव जी एक प्रश्न पूछना है आपसे। मैंने कहा राजीव जी नहीं संजीव जी, संजीव है मेरा नाम। तो फिर एक दो बार हो गया, मैंने कहा भैया थोड़ा सा क्या कह रहा हूँ यार, नाम मैं बता दिया ना आपको। तो पंडित जी नाम में क्या फर्क पड़ता है? नाम तो कुछ भी हो, नाम में क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, नाम में फर्क पड़ता है। जिसका जो नाम होगा उसे उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए, गलत नाम से पुकारे नहीं जाओ। हम क्या बात कर रहे हो यार, भले मैं और अच्छा नाम से पुकारता हूँ आपको, भले कितना भी अच्छा नाम हो, यह अच्छे नाम की विवक्षा नहीं है। नाम निक्षेप अच्छे शब्द या खराब शब्द की बात नहीं करता, नाम निक्षेप तो ये कहता है जिसका जो नाम है उसको उससे पुकारो, बस दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, और कुछ नहीं कहना है हमारे, जिसका जो नाम है सिर्फ उसे उससे पुकारो, नाम बिगाड़ने की जरूरत नहीं। वस्तु स्वरूप में, जिनवाणी में, शास्त्रों में सब तरह के नाम मिलेंगे, उन नामों को जानना नाम निक्षेप है पहला। दूसरा नाम क्या था? स्थापना निक्षेप। ये क्या है स्थापना निक्षेप? क्या चीज है बोलो, किसे कहेंगे स्थापना निक्षेप? देखो दो तरह की स्थापना की चर्चाएं शास्त्रों में मिलती है, एक तद आकार स्थापना और एक असदाकार स्थापना। तद आकार और असदाकार स्थापना माने ये भी सब काम चलाने के लिए है, स्थापना निक्षेप भी प्रयोजन की दृष्टि से। जब किसी व्यक्ति की, जब किसी वस्तु की, जब किसी पदार्थ की अनुपस्थिति हो, एब्सेंट हो, उपस्थित नहीं हो, तो उसका काम चलाने के लिए उसकी स्थापना किसी दूसरे वस्तु में कर दी जाती है। तो जिस वस्तु में स्थापना की गई है उसे उसी नाम से पहचाना जाता है, उसके साथ में वही व्यवहार किया जाता है जो ओरिजिनल के साथ में किया जाना था, क्योंकि स्थापना कर दी गई है। बलवान कैसे होते हैं? आप कहेंगे सवित्रागी होते हैं, आप कहेंगे सर्वज्ञ होते हैं। भगवान सवित्रागी सर्वज्ञ होते हैं। तो भगवान जो होते हैं वो चेतन होते हैं क्या चेतन होते हैं? चेतन होते हैं। जीवी तो भगवान बनते हैं पक्का, जो अचेतन होते हैं वो तो भगवान नहीं हो सकते नहीं, तो फिर वेदी पे विराजमान है भगवान है के नहीं? जो वेदी पर विराजमान है ये भगवान है या नहीं? ये स्थापना लिखी है भगवान क्या? क्योंकि उन चेतन की स्थापना हमने इन पत्थर की मूर्तियों से कर दी। बहुत जगह पर होती है ऐसी स्थापना, किसी भी चीज में किसी की भी स्थापना कर दी जाती है। अरे अनेक बार तो हम अनेक तरह के गिफ्ट में गिफ्ट देने वाले की स्थापना कर ले, किसी चीज को देख करके हमें उस व्यक्ति की याद आती है, उस वस्तु में हमने उसकी स्थापना कर ली नहीं बस। ये सब जो स्थापना है, जो हमने प्रतिमाओं की स्थापना की बात कही, ये सब है सदाकार स्थापना। जो वस्तु जैसी है उसकी उसी प्रकार से स्थापना, उसी आकार में स्थापना। गांधी जी की मूर्ति की स्थापना गांधी जी की शक्ल वाली प्रतिमा में करना, ऐसा नहीं हो सकता कि नेहरू जी की प्रतिमा बनाओ शक्ल उनकी और इसमें हम गांधी जी की स्थापना करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। वैसा सदाकार स्थापना कैसी होगी? जैसा उनका स्वरूप था वैसी स्थापना सदाकार स्थापना होती है। इसलिए मैं तो कई बार इस तरह की भी बात कह सकता हूँ कि भगवान यदि वितरागी हैं तो उनकी स्थापना भी वितरागता में ही होनी चाहिए, ठीक है ना? अभी समझो आप, बहुत तरह की बातें हो सकती है सदाकार स्थापना के संदर्भ में, विद्यमान वीर कंकरों की स्थापना है, किसी की प्रतिमा स्थापना है, ये सब सदाकार स्थापना में जाएगी। पिताजी की फोटो है, फोटो चित्र वगैरह भी सब सदाकार है, वो सब सदाकार स्थापना में होंगी। अब असदाकार स्थापना कैसी होती है? असदाकार स्थापना मतलब तत्व कहते हैं वह और आकार, वो कहते हैं सदाकार। सदाकार का मतलब उस वस्तु के आकार वाली, वो है सदाकार। और असदाकार मतलब वस्तु की शेप तो अलग तरह की थी और ये जो बनाया है हमने इसकी शेप उस तरह की नहीं, उसका नाम है असदाकार स्थापना। एक ऐसी स्थापना होगी, बताओ, बता सकते हो कोई एग्जाम्पल? असदाकार स्थापना के लिए कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? ऐसा भी कह सकते हैं अपन, उस फ्लैग में पूरे देश की स्थापना, कंट्री की स्थापना। हाँ, आश्रम है। देखो ये तो खैर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, मतलब सारी बातें होगी, मैं तो छोटी छोटी सी बात बताता हूँ आपको। पूजन करते समय पूजा के आठ द्रव्यों में पीले चावलों में पुष्प की स्थापना कर दी हमने, जो जरूरी सामग्री है, नारियल की गोले की उसकी जो चिटक है तभी देते नैवेद्य कह दिया, टीवी है तो जीत कह दिया, ये स्थापना ही तो है और क्या है। और बतलाऊ यदि मैं स्थापना के बारे में आपको, तो ऐसा नहीं हो जाता कभी कभी खेलते हुए, यदि आप चेस खेल रहे हैं तो शतरंज खेलते समय 32 काठियां होंगी उसमें 16 और 16, अब उनमें से यदि समझ लीजिए हमारा हाथी हो गया, एक का हो गया, मिस हो गया उसमें से, तो क्या आप उस शतरंज को पूरी को फेंक देते हैं? या एक हाथी मिल जाएगा आपको मार्केट में अलग से, आपको पूरा ही लाना पड़ेगा, वो चीज पूरा ही लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं खेलते समय कि उसकी जगह पर हमने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, भैया ये हाथी है, और उस पत्थर के टुकड़े में किसकी स्थापना है? चलेगा कैसे? रुख सीधा चलेगा, समझ में आ रही है बात? तो कैसा चलेगा? घोड़ा नहीं है समझ लो, घोड़े की आकृति। अब वो चलेगा कैसे? कि ढाई चलेगा, ढाई घर चलना है उसको। तो ये जो स्थापना है, इसके छोटे से टुकड़े में हमने स्थापना कर दी, ये स्थापना क्या कहलाएगी? असदाकार स्थापना। और सच में उस स्थापना के बाद में उसके साथ में किया जाने वाला व्यवहार भी उसी तरह का होता है। अब वो जो व्यवहार है ना, उसके साथ में सत्कर्म जैसा व्यवहार नहीं होगा, उसके साथ में वही जैसा व्यवहार होगा, क्वीन जैसा व्यवहार होगा, किंग जैसा व्यवहार होगा, ऐसा ही व्यवहार उसके साथ में किया जाएगा। ये स्थापना का चमत्कार है। आप सोचिए, यदि स्थापनाएं नहीं होती तो क्या होता? यदि स्थापना नहीं होती तो किसी व्यक्ति को कोई चीज समझाने के लिए कैसे समझाते? स्थापना निक्षेप में और भी इस तरह की बातें आ जाएगी, जो समझ लो आप, हम मान लेते हैं जितने डायग्राम बनते हैं छोटे छोटे से, ये सब स्थापना का ही विषय है। हमने एक क्षेत्र बनाया और हमने कहा ये तीन लोक है, और यहाँ देखो ये सेंटर में क्या है? मध्य लोक। तो यहाँ मध्य लोक है। जितने मॉडल बनते हैं, जितनी रचनाएं बनती है, वो सब स्थापना के ही विषय है। जितने मॉडल बन रहे किसी भी चीज के, स्थापना कर दी हमने उस चीज की, किसी चीज को समझाते समय उसके मॉडल बना लेते हैं। अगर लोग जब किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते समय उसकी रणनीति तैयार किया करते थे, तो उसके एरिया का पूरा मॉडल रख करके लकड़ी से बात किया करते थे कि देखो यहाँ से हम प्रवेश करेंगे, इधर इसका किले का द्वार है, इधर ये है, इसकी ऊंचाई इतनी है, ये है, उधर स्थापना ही तो की है उनमें, और क्या है। फिर कोई राजा ये कहे वहां बात करते समय, ये देखो ये जो है ना, ये जो गेट दिख रहा है, इस गेट को उगालना बहुत मुश्किल काम है, इतनी सलांग नहीं लगा पाएंगे। तो कोई खड़ा हुआ व्यक्ति से, अरे क्या बात करते हो, इतने से को नहीं उगाल पाएंगे, मैं पूरे किले को उगाल जाता हूँ, एक पैर की दस उधर। अरे तो मूर्त मॉडल को उगालने की बात नहीं है, मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्थापनाएं होती है, ये स्थापनाएं अपने आप में बहुत महत्व रखती है। कभी कभी सम्यक दृष्टियों की स्थापना, इंद्रों की स्थापना, विधान में प्रतिष्ठाओं में इंद्र बना देते हैं, इंद्रों में स्थापना कर दी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, इस स्थापना के संदर्भ में एक मार्मिक बात कहना चाहता हूं कि ये स्थापनाएं, इनमें चेतन में पूज्यत्व की स्थापना नहीं होती। क्या कहा, क्या वाक्य बोला मैंने? चेतन में कभी भी पूज्य पने की स्थापना नहीं होती। ये मार्मिक बात है, ध्यान रखनी होगी। इसलिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में सब तरह के सद होंगे, सबकी स्थापना होगी, यहाँ तक कि तीर्थंकरों के माता पिता भी बना दिए जाते हैं। इनको इंद्र बना दिया, इनको कुबेर बना दिया, इनको शिव बना दिया, इनको महाराजा बना दिया है, इनको सब सबको अलग अलग पद बना दिए, सबने स्थापना कर दिया अलग अलग तरह से। लेकिन भगवान भी बनाया है किसी को? कि आज बाल तीर्थंकर का जन्म कल्याणक का दिन है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, और आज जन्म कल्याणक का जुलूस निकलना है। पंडित जी, हमारे घर में हमारे भाई साहब के बच्चा हुआ है, मैं ले आता हूँ जन्म कल्याणक जुलूस में, उसको निकाल लेना। हो सकता है ऐसा? वहां तो प्रतिमा में ही होगी स्थापना, तो पूज्य पने का व्यवहार नहीं होगा। किसी में भगवान की स्थापना नहीं कर सकते अपन, ख्याल में आ रही है बात? किसी चलते फिरते हुए जीव में, किसी भी जीव में हमने स्थापना कर दीजिए भगवान ने, ये नहीं चलेगा। पाषाण में स्थापना कर सकते हो, ठीक है ना, फोटो में स्थापना कर सकते हो, स्थापना होगी प्रतिष्ठा नहीं होगी, प्रतिष्ठा प्रतिमा की ही होगी। ये सब स्थापना के विषय कुछ पूछना। देखो दो हो गए यहाँ, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप। फिर तीसरे की बात करते हैं, द्रव्य निक्षेप क्या चीज और भाव निक्षेप क्या चीज है, दोनों को साथ में लेता हूं। द्रव्य और भाव निक्षेप किसे कहें? तो कहा द्रव्य निक्षेप तो कहलाएगा किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को भूत भावी से देखना, द्रव्य अनादि अनंत होता है ना, तो द्रव्य से देखना क्या होता है, उसको पास्ट से देख रहे हो या उसको फ्यूचर से देख रहे हो, ये द्रव्य निक्षेप का काम है। इसमें तो बहुत तरह की बातें शामिल होती है द्रव्य निक्षेप में, इस तरह की बात समझ लो आप एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में, उदाहरण के तौर पर जब हम किसी व्यक्ति की चर्चा करते हैं तो उसको पिछली अवस्था से पुकारे, रिटायर्ड हो गए फिर भी कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, ऐसा होता है कि नहीं? मजिस्ट्रेट साहब थे, अब नहीं रहे, रिटायर्ड हो गए, अब क्या पुकारते हो आप उनको, अब आज भी मजिस्ट्रेट साहब कहते, आज भी वकील साहब कह करके पुकारते, डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी करना बंद कर दिया, इलाज नहीं करते किसी का भी, फिर भी सारी दुनिया उनको डॉक्टर साहब के नाम से ही पुकारती है। तो ये क्या किया आपने, पिछली अवस्था के नाम से उनको वर्तमान में पुकारा, ये द्रव्य निक्षेप का काम, और भावी अवस्था से भी वर्तमान में पुकारा जा सकता है। किसी व्यक्ति ने कोई काम करने का संकल्प लिया, क्या मेडिकल कॉलेज में किसी ने एडमिशन लिया तो उसको डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, उसको भी कह रहे थे डॉक्टर साहब, करेगा कि नहीं करेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा। अरे किसी व्यक्ति ने यहाँ रहता है और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के संकल्प से कहीं बाहर जाने का विचार कर रहा है, संकल्प कर लिया है, डिसीजन हो गया है, फाइनल हो गया है, तो आप पड़ोस वाले कहने लगते हैं और डॉक्टर साहब अभी एबीसीडी नहीं जानता मेडिकल साइंस के बारे में, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, ये कौन सा है, ये द्रव्य निक्षेप से बात कर रहे हैं इस तरह की। और यदि मैं बात करूं द्रव्य निक्षेप को थोड़ा सा और क्लियर करूं तो वर्तमान पर्याय में नहीं भूत भावी पर्यायों से देखना, वर्तमान भावी नहीं भूत भावी भाव की अपेक्षा से भी देखना, ये द्रव्य निक्षेप कहलाता है, इससे भी व्यवहार चलता है, व्यवहार चलाने के लिए यही रहता है। भूत भावी भाव की अपेक्षा से यहां सा बिल्कुल चलता है। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा कि आपको मालूम है वो सीता का जीव, सीता नरक में रावण को संबोधन करने गई थी, यू नो आपको पता है, नहीं मालूम, सीता जो है वो तीसरे नरक में रावण को संबोधन करने के लिए गई। क्या अब आपको तीसरे नरक में रावण को संबोधन करने के लिए गई सीता? हाँ जी, शास्त्र का कथन है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इस शास्त्र के कथन में कितनी सच्चाई है, सच्ची तो है बात है, लेकिन दृढ़ निक्षेप से सच्ची है। क्यों? क्योंकि भाव निक्षेप वर्तमान अवस्था को देखता है। भाव निक्षेप से देखोगे तो क्या कथन होगा, एक देवगति का जीव एक नारकी जीव को संबोधन करने के लिए जाता है, पर हमने कह दिया कि सीता रावण को संबोधन करने गई, ना तो वहां सीता है और ना वहां रावण है, समझ में आ रहे? अरे यदि नरक में जाकर के आप रावण को आवाज लगाओगे, पुकारोगे और किसी से पूछोगे तो कहते यहां तो कोई रावण नहीं रहता है, वैसे तो सभी नारकी रावण ही होते हैं, लेकिन रावण नाम का व्यक्ति वहां आपको नरक में कोई नहीं मिलेगा। ये क्या हुआ, रावण तो तीसरे नरक में गया था। अरे भाई साहब, रावण तीसरे नरक में गया था तो यहां अंतिम संस्कार किसका किया था, रावण तो गया ही नहीं, रावण तो यही निकल गया था, तो कौन गया? तो रावण का जीव नरक में गया है, और नरक में रावण नहीं है, नरक में तो नारकी रहता है, आ रही है बात? लेकिन उस नारकी को नारकी में देखकर रावण देखना, ये द्रव्य निक्षेप का काम है। सोलहवें स्वर्ग का प्रतीन्द्र जो सीता का जीव है, उसे प्रतीन्द्र में देखकर सीता देखना, ये द्रव्य निक्षेप का काम है। आप सोचिए, यदि ये द्रव्य निक्षेप नहीं होता तो महावीर भगवान को तीर्थंकर कहना संभव नहीं था। ऋषभ देव से महावीर तक के चौबीसों को तीर्थंकर कहना, ये द्रव्य निक्षेप से संभव है, क्योंकि तो भाव निक्षेप से देखोगे तो इनमें से एक भी तीर्थंकर नहीं है, सब सिद्ध भगवान थे भूतकाल में तीर्थंकर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऋषभ देव तीर्थंकर है क्या कि नहीं, थे भूतकाल में, आज क्या है, सिद्ध भगवान। अजितनाथ स्वामी, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ बोलो, महावीर स्वामी, पार्थनाथ स्वामी, तीर्थंकर है कि नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, पार्श्वनाथ स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तेईसवें नंबर के तीर्थंकर है या तेईसवें नंबर के तीर्थंकर थे? अब हैं कहें तो गलत हो जाएगी ना बात, गलत हो जाएगी ना। अब ये सूत्र ये कह रहा है कि गलत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि द्रव्य निक्षेप से आप उनको पार्श्वनाथ स्वामी आज भी तीर्थंकर हैं कह सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बात समझाना चाह रहे हैं? ये पार्श्वनाथ स्वामी आज भी तीर्थंकर हैं। कौन सी अपेक्षा से? भूत की अपेक्षा से। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? भविष्यकालीन चोरी की को भी। अच्छा राजा श्रेणी कहाँ है अभी? राजा श्रेणी तीर्थंकर होंगे। अच्छा राजा श्रेणी का जीव तीर्थंकर, राजा श्रेणी तीर्थंकर होंगे ना भविष्यकालीन चोरी में? पक्का? कौन से नंबर के तीर्थंकर होंगे? पहले तीर्थंकर होंगे। मैंने बहुत जगह पर शास्त्रों में देखा है, देखो भविष्यकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम देखे हैं, पहले तीर्थंकर का नाम मेरे को कहीं भी श्रेणी नहीं मिला। महापद्म, महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे भविष्यकालीन 24 के पहले तीर्थंकर। तो आप कह रहे हो श्रेणी होंगे कि नहीं? श्रेणी तो उनका बहुत पुराना नाम था, श्रेणी के नाम तो बदल गया। मैं कहता हूँ आज यदि कोई व्यक्ति यहाँ आकर के आपके जैन सेंटर में आकर के मेरे पिछले जन्म के नाम से आपसे पूछे कि साहब वो आए हुए ना कौन? भरत सागर जी? कौन भरत सागर जी? हमारे यहाँ तो कोई नहीं आए। इन्हीं नहीं यही आए हुए हैं जैन सेंटर में, मुझे पता है, मैंने अपने अवधि ज्ञान से देखा यही आए हैं। कौन यार, किसकी बात कर रहे हो? तो राम नारायण, हरि नारायण, किसी की भी नाम कर लो, आपके कुछ भी नाम कह दो, वो मिलेगा नहीं आपको यहाँ। माने पिछले भाव के आधार पर किसी व्यक्ति को नाम से पुकारना, ये कहाँ की समझदारी का काम? हमारे को कोई व्यक्ति पिछले जन्म के नाम के आधार पर पुकारे तो वो ना समझ ही कहलाएगा भाई साहब। लेकिन फिर भी शास्त्रों में इस प्रकार के व्यवहार, इस प्रकार के कथन मिलते हैं लिंक बैठाने की अपेक्षा से, और वो इसलिए करते हैं इस तरह के कथन कि उससे आपको पुण्य पाप की व्यवस्था स्पष्ट समझ में आए। तो जोड़ना तो पड़ेगा कि वही जीव है देखो नरक में गया, वही जीव है देखो तिरमान नरक में उसने समय दर्शन लिया, फिर वही जीव है देखो तीर्थंकर बना, फिर देखो आगे ऐसा जाएगा, उसको जोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। सच्चाई तो ये इस तरह के नाम वाले मिलेंगे नहीं। कभी कभी तो आश्चर्य ऐसा होता है, मैं आपसे पूछूं भरत चक्रवर्ती कहाँ से पहुंच गए? पता आपको भरत चक्रवर्ती कहाँ से पहुंच गए? अरे कहाँ से मोक्ष गए उसको तो छोड़ो, पहले ये बताओ चक्रवर्ती मोक्ष जाते हैं क्या? मोक्ष तो भरत मुनि गए हैं, भरत केवली गए हैं, भरत अयंत गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति तो उन्होंने की है। लेकिन फिर भी आज हम उन्हें, तो आपको पता है वहाँ श्रवण बेलगोला में सामने की साइड भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा विराजमान है, लो आज भी तो चक्रवर्ती की प्रतिमा देखना है। चक्रवर्ती की प्रतिमा नहीं, मुनि बनने के बाद, भगवान बनने के बाद भगवान भरत की प्रतिमा। भगवान भरत अलग है और चक्रवर्ती भरत अलग है, हम इन दोनों को अलग अलग नहीं पहचान पाते, और भगवान भरत को उनकी भूत अवस्था के आधार पर चक्रवर्ती भरत दे देते। आज भरत चक्रवर्ती को अंतर्भूत में केवल ज्ञान हो गया कि भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान नहीं हो सकता दीक्षा लिए बिना। चक्रवर्ती भरत को केवल ज्ञान नहीं होगा, मुनिराज भरत को केवल ज्ञान होगा। इसी तरह से देखो आप और स्थापना की बात, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा माथे पर पन लगे, भूतकालीन पर्याय है, भगवान की प्रतिमा नहीं हो सकती पन लगी हुई, लेकिन होती है पूरी दुनिया में, सब जगह, सब जगह पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं पन वाली मिलेगी। 90% जगह, 10% स्थानों पर प्राचीन प्रतिमाओं में भी बिना फल वाली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं मिलेंगी। 500 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 800 साल पुरानी, कई तीर्थ क्षेत्रों पर ऐसी पुरानी प्रतिमाएं, नीचे तर्क का चिन्ह बना हुआ है, माथे पर तर्क नहीं। माथे पर तर्क क्या है? तर्क भूतकालीन अवस्था है, मुनि अवस्था की प्रतिमा है वो वास्तव में, क्योंकि उपसर्ग मुनि अवस्था में हुआ था, अरहंत अवस्था में उपसर्ग नहीं हुआ था। हमने कब मान लिया उपसर्ग? अरहंत अवस्था में उपसर्ग मान लिया। हमने प्रतिमा कौन सी बनाई बोलो? हमें वो उपसर्ग वाली प्रतिमा पसंद आती है, बिना उपसर्ग वाली नहीं पसंद आती। संकट पड़ रहा है, अगले हमारे को कोई सजा मिले, पनिशमेंट मिले, बॉस कोई व्यक्ति हमारे को गालियां दे रहा हो और तुम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको किसी को दिखाओ, ये अच्छी बात नहीं है। भले ही मैं शांत रहा उसमें, मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया, मैं बहुत मुस्कुराता रहा शांत भाव से, और एक व्यक्ति मुझे गालियां देता रहा, उल्टा सीधा बोलता रहा, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और सारी दुनिया को दिखा रहे हो, ऐसा बेइज्जती करते हो मेरी, ये इंसल्ट है ना, अच्छी बात नहीं है ना। अब पार्श्वनाथ भगवान है, वे शांत बैठे हैं और वो पत्थर बरसा रहा है, पर तुम उसकी रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने दिखा रहे, अच्छा नहीं। मुनि अवस्था की बात है, भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था, फिर भी उनकी प्रतिमा इस तरह की बनने लग गई, ठीक है, हो जाता है इस तरह की बातें। हाँ
जी, तो सीता जी रावण को प्रतिबोध करने में
हाँ
तो दो तीन मिनट में बता सकते क्या प्रतिबोध?
अच्छा नहीं सर, मैं था नहीं वहाँ। नहीं लेकिन हाँ इतना ही था कि वो वहाँ गई संबोधन करने के लिए, जो कुछ भी हुई हो चर्चा वो मेरे ध्यान में नहीं है, वहाँ तो था ही नहीं मैं, और सुना भी नहीं मैंने, मेरे ख्याल में भी नहीं है। कुछ न कुछ अच्छी बातें की होगी, देखो भविष्य काल में भी इस तरह का संबंध उनका बैठने वाला है। शास्त्रों में तो केवल ज्ञानियों के द्वारा कई कई बातें लिखती है भाई, कहाँ कहाँ की बातें किस किस प्रकार की आती है शास्त्रों में, जैसे मैं आपको बात कहूँ इसी को यदि मैं और स्पष्ट करूँ तो सीता का जीव 16वें स्वर्ग से जब मरेगा, स्वर्गवास होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि स्वर्ग से स्वर्गवास नहीं होता, मनुष्यों का स्वर्गवास होता है ना, तो स्वर्ग से जब उसकी आयु पूरी होगी तो वो जीव इस मध्य लोक में आकर के चक्रवर्ती बनेगा, और रावण और लक्ष्मण के जीव जो अभी नरक में है वे वहां से निकलकर उस सीता के माने उस चक्रवर्ती के बेटे होंगे। ये लिखिए, मैं पंक्तियां दिखा सकता हूँ, 1200 वर्ष पुरानी शास्त्रों की पंक्तियां दिखा सकता हूँ आपको। सीता का जीव 16वें स्वर्ग से उतर करके नीचे आएगा, तब रावण और लक्ष्मण के जीव नरक से निकलकर कुछ बहु बीच में धारण करके फिर उस चक्रवर्ती के बेटे होंगे। फिर क्या होगा? फिर तीनों ही वो चक्रवर्ती और दोनों बेटे किसी वैराग्य का निमित्त पाकर दीक्षा लेंगे, मुनि हो जाएंगे, मुनि होकर के आत्म ध्यान करेंगे, आत्म स्वभाव में लीन होंगे, और वहां से आत्मलीनता की अवस्था में ही उपसर्गादि पूर्वक की जो भी परिस्थिति ऐसी बने, जीवन पूरा होने पर पंच अनुस्करों में चले जाएंगे, परवासी में चले जाएंगे, तीनों ऊपर चले जाएंगे, और फिर तीनों जब वहां से वापस आएंगे लौट करके तो रावण का जीव तो बनेगा तीर्थंकर अपने यहाँ भविष्यकालीन चोरी जी का, और सीता का जीव बनेगा उसका गणगर, और लक्ष्मण का जीव बनेगा धाती गढ़ का तीर्थंकर। कैसे संबंध बनते हैं इस तरह के? ऐसी बात नहीं है कि महापुरुषों के ही जन्म जन्मांतरों में संबंध देखे जाते हैं, हमारे भी जन्म जन्मांतरों में इस तरह के संबंध मिलते हैं, ऐसे संबंध देखे जाते हैं, होते हैं इस तरह के संबंध में, ठीक है ना सबके। कभी कभी तुम्हें यहाँ तक बात कहता हूँ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है इसका मतलब उसका पूर्व जन्म में कोई ब्लड रिलेशन है, समझ में आ रहा है? किसी का किसी के साथ में यदि भूतकाल में ब्लड रिलेशनशिप ना रहा हो तो वो व्यक्ति उसके साथ में कोई व्यक्ति नहीं है व्यवस्था बात नहीं कर सकता। तो क्यों बात कर रहा था, कैसे बात कर रहा था वो, तो इसीलिए बात कर रहा था, तो उसका कोई संबंध था। और शास्त्रों में मिलता है ऐसा उल्लेख, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र भोले नहीं जन्म थे क्योंकि पिछले जन्मों में किसी से रिलेशन नहीं था। किससे बोलते, नित्य गोचे आए थे, इंद्र को कीजे बल फिर आए थे, असंगी पंचेंद्री थे, समझ लो आप विकलत रहे थे, माता पिता थे नहीं, किसी के साथ में कोई ऐसा ब्लड रिलेशन था नहीं, समूचे जीवते वहां से आए, किससे बोले, किसी के परिचय नहीं है। दो शब्द बोले तीर्थंकर के समोचरण में भरत चक्रवर्ती ने जाकर के प्रश्न किया कि महाराज हे प्रभु, मैं इतना पुण्यशाली चक्रवर्ती सम्राट, इतना वैभव, सारे पुण्य में कोई कमी नहीं, ये मेरे बच्चे ऐसे गूंगे कैसे पैदा हुए, मैं ऐसा कैसा ऐसा पाप का उन्हें कैसे मिले, ये गूंगे हैं सब। तीर्थंकर के जीवन धनी में आया ऋषभ देव भगवान के उपदेश में वाणी में ये सब बोलते हैं, इन सबको बोलना आता है, सब बोलेंगे हम जो आपके से बोलना आता है, 8 साल के होंगे एक शब्द नहीं बोले आज तक कभी, सारी चर्चा सुन रहे थे वो, बोलो दिनभरी में इस तरह की बात आई तो उस बच्चों ने इतना कहा, पिताजी हमें दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें। और पता है आपको, वे दीक्षा लेकर के मोक्ष चले, 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती। तो हम किसी से भी बात कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर बात कर रहे हैं, किसी फल वाले से बात कर रहे हैं, सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, रोड पर चलते चलते किसी दुकान वाले से हमने पूछ लिया, किसी चीज का भाव पूछ लिया, किसी चीज का नाम पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, भाई का टाइम क्या हो गया है, एक दिन कोई ना कोई संबंध रहा है। इसलिए भाई साहब पिछले जन्मों में हमारे खास रिलेशन वाले रहे हैं, आप क्यों संबंध बिगाड़ रहे हो उनके साथ, अच्छा व्यवहार करो, प्राणी मात्र के प्रति अच्छे व्यवहार की बात यहाँ निकल करके सामने आती है। बहुत बातें हुई किसके संदर्भ में, द्रव्य निक्षेप के संदर्भ में, भाव निक्षेप उसे वर्तमान अवस्था रूप से देखेगा, इतनी बात है। इंद्रभूति गौतम, गौतम गंधर्व को तो जानते होंगे आप लोग सब, गौतम गंधर्व को जानते हैं, कैसे जानते हैं दोस्त आपके, कैसे जानते हैं, अरे भाई उनसे बातचीत हो तो ब्रदर रिलेशन की बात कर रहा था ना, आपने गंधर्व से कब बात करी, आप कैसे जानते हैं उनको, इन्हें नाम सुना है, परिचय है भगवान महावीर स्वामी के गंधर्व से, ठीक है ना, पहले गंधर्व थे इंद्रभूति गौतम गंधर्व, कहानी सुनाई थी 2-3 दिन पहले, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, इंद्रभूति गौतम गंधर्व, मैं ये कह रहा हूँ आज भी वे इंद्रभूति गौतम भगवान बन गए लेकिन उसके बावजूद भी हमें वे गणधर ही दिखाई देते हैं, ये द्रव्य निक्षेप का काम, भगवान बन जाने के बाद भी उन्हें गणधर देखना कैसे दिख रहे हैं, इंद्रभूति गौतम बताओ क्या देख रहे हो आप, इंद्रभूति गौतम कौन है, गणधर, गणधर नहीं है, सिद्ध भगवान है, महावीर भगवान से कुछ भी कम नहीं है, आदिनाथ से कम नहीं है, इस समय इंद्रभूति गौतम हो या आदिनाथ हो वो रंग के मात्र फर्क नहीं है उनमें, बोलो समझ नहीं बात, तो ये बात है वर्तमान अवस्था से देखना ये भाव निक्षेप और भूत वाली अवस्थाओं से देखना ये द्रव्य निक्षेप का काम है, तो ये क्लियर, कठिन तो नहीं है बात, सूत्र सरल था, आगे देखिए समय बहुत लग गया, प्रमाण नए अधिगम है, हाँ आप लोगों को कहा ही नहीं मैंने भूलने के लिए, कैसे भूलेंगे आप, प्रमाण नए अधिगम है, प्रमाण नए अधिगम है, प्रमाण नए अधिगम है, साहब आपने जो इतनी बातें कही है कि कैसे जाने इनको, इसका प्रमाण से जानो और नए से जानो, अधिगम माने क्या होता है, ये कहा था ना अधिगम उपदेश ज्ञान ज्ञान करना तो अधिगम माने ज्ञान, ये समझो आप प्रमाण से ज्ञान करो और नए से ज्ञान करो ऐसा सिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रमाण और नए से ज्ञान करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है प्रमाण और क्या होता है नए, बहुत बेशक की है बात। माने प्रमाण और नए, स्पेशली उसमें भी नए, ये जैन दर्शन की ऐसी अद्भुत शैली है, ये ऐसी प्रतिपादन शैली है जो पूरी दुनिया में जैन दर्शन के अलावा किसी दूसरे धर्म दर्शन के पास नहीं। मैं कह सकता हूं कभी कभी तो कि यूनिक चीज है ये जैन दर्शन की, जो दूसरे किसी दर्शन में नहीं है। क्या कहा मैंने, क्या नाम, कौन सी चीज, नए। आप कहोगे कौन सी नई चीज है, यानी नए नया नहीं, नया नया नहीं है, नए। ये नए क्या होता है, नए माने हैं दृष्टिकोण, नए माने हैं एंगल, नए माने हैं अपेक्षा, नए माने हैं सापेक्ष कथन करना, नए माने हैं किसी न किसी एंगल से देखना, ये नए है। ये विवक्षाएं जैन दर्शन का प्राण है, यदि ये विवक्षाएं नहीं हो तो जैन दर्शन खत्म हो जाए। ये जैन धर्म दर्शन विवक्षाओं के ऊपर टिका हुआ है। क्या क्या विवक्षाएं है, क्या क्या होती विवक्षाएं, कौन सी अपेक्षा, कौन सी विवक्षा, क्या कहना चाह रहे हो आप, ये क्या है। आपने चार बात तो सुना है, आपने अनेकांत तो सुना है, अनेकांत वस्तु का स्वरूप होता है, त्यागवाद उसे प्रतिपादन करने वाली शैली होती है, और उस त्यागवाद के लिए नए शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाथी का एग्जाम्पल जैसा, अभी आप हाथी के एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ तो अपन एग्जाम्पल्स की लाइन लगा सकते हैं, एक एग्जाम्पल थोड़ी है, बहुत हो सकते हैं एग्जाम्पल। नए माने किसी भी वस्तु को किस तरह से देखे, बात वाक्य की दृष्टि से देखोगे तो झूठ दिखाई देगी, लेकिन अपेक्षा हो सकती है, दुनिया में उसको झूठा नहीं माना जाता। बहुत सी बातें ऐसी होती है, जैसे जब कभी हम इस तरह के प्रयोग करते हैं कि बच्चों के कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे होते हैं, कपड़े छोटे कभी नहीं होते। आपको यदि ऐसा लगता हो कि नहीं हो जाते हैं, तो हम कहते हैं लाने के बाद में आप उसको नापो और नाप लिख करके रखो। अब जब साल दो साल बाद में आपको लगे कि कपड़े छोटे हो गए, तब नापना कितने छोटे हुए। सच तो ये है कि बच्चे बड़े हुए हैं, लेकिन कथन क्या किया जाता है, कपड़े छोटे हो गए। दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत भी नहीं माना जाता है, अपेक्षा है। जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो अनेक बार हम इस तरह के प्रयोग करते हैं, वॉशिंगटन आ गया, न्यूयॉर्क आ गया, न्यूजर्सी आ गया, कौन आ गया, वो आ गया कि हम वहां आ गए, बोलो बात तो ऐसी नहीं, हम वहां आ गए हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, क्या आ गया भाई साहब, कौन सा स्टेशन आ गया, कौन सी जगह आ गई, हाँ हम वहां पहुंचे हैं, वो नहीं आया है। विवक्षा, बिना विवक्षा के काम नहीं चलता, ये पूरी दुनिया नए के ऊपर चलती है, इसलिए इसको दूर नया कहते हैं। दूर नए के ऊपर चले उसका नाम है दुनिया, इसका नाम दुनिया क्यों है कि दो नए पर चलती है। दो नए कौन कौन से, एक सच्चाई और एक व्यवहार, एक निश्चय और एक व्यवहार, इन दो नयों के ऊपर पूरी दुनिया चलती है। मतलब एक दोनों ही होंगे, और व्यवहार भी होगा और निश्चय भी होगा। श्रद्धा में निश्चय रहता है और व्यवहार में काम आता है, शिष्टाचार की दृष्टि से व्यवहारिक कथन भी किए जाते हैं। जब हम आपके घर में आकर के रहते हैं तो आप ये कहते हैं पंडित जी से अपना ही घर समझना, और हम समझने लगते हैं उसे अपना ही घर, दो चार दिन में लगता है कि यार पता नहीं रजिस्ट्री कब कराने वाले, कब कराने वाले हैं रजिस्ट्री, और हमने कह दिया कि पंडित जी दिमाग खराब हो गया क्या आपका, आप क्या कह रहे हो, सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप ही नहीं कहा था अपना ही समझना तो अपना ही समझ रहा हूँ। हमने अपना समझने के लिए कहा था, आपको कहा था, वो वचन का विषय था, आपको भी इसे कर्णेन्द्रीय का विषय बनाना था, बस हमने शब्दों में कहा और आपको शब्दों में जानना था, हमने दिल से कहा नहीं, तुमने दिल से लगा लिया। थोड़ी ना ऐसा अभिप्राय था, अंदर हमारे अभिप्राय में ये बात नहीं थी, तुमने क्यों उस बात को दिल से लगा लिया बताओ? अपेक्षा समझनी पड़ेगी, इसमें क्या अपेक्षा हो सकती है कि पंडित जी आपका ही है, अपना ही समझना। कि अपेक्षा तो ये जैसे अपने घर में नल खुला नहीं छोड़ देते, रूम से निकलते समय लाइट बंद कर देते हो, जैसे अपना ही समझ करके इस्तेमाल लेना, किराए की चीज समझ करके लावा जैसे इस्तेमाल मत करना, इसका नाम है अपना ही समझना। हाँ समझ, अपना समझने का मतलब क्या है? क्या कि जिस तरह से तुम अपनी चीज को, पंडित की गाड़ी है आप ले जाओ चलाओ कोई बात नहीं, ये अपनी समझना, अपनी समझना मतलब रफ ड्राइविंग मत करना, अपनी समझना मतलब स्क्रेच मत लगाना कहीं घर में बढ़ा के, अपनी समझने का मतलब क्या है? अपेक्षाएं हैं, कहा कुछ जाएगा कितनी हुई अपेक्षाएं कुछ होगी। अरे यदि ये व्यवहार नहीं होता तो सारा स्तुति साहित्य और भक्ति साहित्य खत्म हो जाता, क्योंकि भक्ति और स्तुतियों में इसी प्रकार के व्यवहार का कथन किया जाता है। हे भगवान आप ही पार लगाने वाले हो, हे प्रभु आप ही संकट मिटाने वाले हो, हे भगवान आपने बहुतों को पार लगाया है, ये सब व्यवहार है। और ये ऐसा ही व्यवहार है जैसे पढ़ी बच्चा आपका ही है, अपना ही समझना। ये जो व्यवहार है ना, ये इसी तरह का व्यवहार है भगवान के साथ में, ये शिष्टाचार है, बस समझ लीजिए। सच्चाई ये है भगवान किसी को पार लगाते नहीं, सच्चाई ये है कि भगवान की कृपा होती नहीं, ये सच्चाई है। फिर भी कथन करते हैं इस तरह की, हाँ इस तरह की पूजाएं आपको मिलेगी, लेकिन समझना पड़ेगा। यदि आपने गलती से उनके मकान को अपना मकान मान लिया, तो जिन्होंने ये कहा है कि अपना ही समझना, उनको फिर दूसरा तरीका भी आता है समझाने का। घर में आप अपने बात चलती है कि यार ये पंडित जी आकर के जमी गए यहाँ पर, चिंता मत करो और दो चार दिन देखते हैं। कि कल वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि अपना ही समझना, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा था ना अपना ही समझना, मुझे अच्छी तरह से आता है उनको समझाना, तो बराबर समझता है किसको क्या समझाना है, किसको कैसे समझाना है, बस ये जिनवाणी में नहीं समझता। ये नए एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति से वस्तु स्वरूप को समझना, अनेक विवक्षाएं होगी, अनेक तरह से बातें कही जाएगी, कहीं कुछ कहा जाएगा कहीं कुछ कहा जाएगा, दोनों बातें सच्ची होगी, एंगल बदल करके, एंगल अलग होगा, ध्यान रखना दृष्टिकोण अलग होगा। हो सकता है एक बात प्रयोजन की अपेक्षा से सच्ची हो और एक बात वस्तु स्थिति की अपेक्षा से सच्ची हो। जब हम समय सार प्रवचन सार जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, कई जगह पर आपको कंट्रोवर्शियल सेंटेंस मिलेंगे, आपको मिलेगा यार एक शास्त्र में ऐसा कह रहे हैं, एक शास्त्र में ऐसा कह रहे हैं, कैसे हो सकता है ये बात तो हमारे को जितने ये बनी कैसे क्या है उस प्रकार। ये आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष कषायें ये सब आत्मा की है, और दूसरे आचार्य कह रहे हैं कि राग कुद्गल का है। अब क्या कह रहे हैं, राग कुद्गल का है कि जीव का है? जीव का है। और मैं आपको शास्त्र में लिखाऊं कुद्गल का लिखा हुआ तो क्या क्या करोगे?
दोनों
बात सच्ची है। कौन सी अपेक्षा से? बस ये नए है, जिसके पास में नए वाली कला है, जिसके पास में ये नयों का कथन समझने की योग्यता आ गई है, फिर उसे कहीं संकट नहीं है, फिर कहीं तकलीफ नहीं है, उसको एकांत नहीं है। विवक्षा समझ लो आप, ये बात कौन सी विवक्षा से कही गई है? अरे जीव में उत्पन्न होता है इसलिए जीव का कहा जाता है, लेकिन पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है इसलिए पुद्गल का कहा जाता है। पॉइंट समझ में आता है? बालक तो अपने माँ बाप का ही होता है, बच्चा तो उनका ही होगा, लेकिन ऐसा कह दिया जाता है ये तो बस अपने दादी का बेटा है, दादी का बेटा है, उनकी सुनता है इसलिए उनका है। कैसे पसंद करते हैं लोग, शादी हो गई तो बेटा तो किसका हो गया है, पराया हो गया, किसका हो गया बेटा, बहू का हो गया। अरे मूर्ख, बहू का तो पति रहेगा, बेटा तो तेरा ही है, भाई बात वो उसका हो गया। ये जो कथन है विवक्षा है, जिसका जिसके प्रति अपनापन है। देखो जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ व्यक्ति कष्ट सह करके भी उसका सहयोग करना चाहता है। ये अपनेपन की महिमा है इस तरह की, समझ लो आप। अपनों के लिए ये व्यक्ति बहुत कष्ट सहने को तैयार होता है, और जिसके लिए थोड़ा बहुत भी कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सके, इसका मतलब समझ लेना वो पराया है। या अपने और पराये की पहचान है ही, कौन अपना है और कौन पराया है इसको पहचान लेना आप। जिस व्यक्ति को आपसे आपका व्यवहार, आपका आचरण, या समझ लीजिए कोई भी चीज जो आपको तकलीफ दे, व्यवहार जिसका है आपके प्रति, इसका मतलब ये है कि वो परायेपन का व्यवहार है, तो अपना नहीं होने। जिसको आपने किसी एक काम के लिए कहा तो मैं नहीं कर रहा, तो इसका मतलब समझ लीजिए उनका कितना अपनापन है आपके प्रति। माने ये जो अपनापन है, अपनापन होता है तो फिर काम होता है, फिर कुछ भी हो, इन्होंने कहा है ना तो काम होगा, उसको कहते हैं अपनापन। ऐसा अपनापन घर घर में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो अपनापन तोड़ने की बात है। जनवाणी में तो जनवाणी का अवलंबन हम लेते हैं तो जितना अपनापन होता है उतना ये व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए जितना हो सके इस अपनेपन को तोड़ देने में ही सार है, क्योंकि भ्रम से अपनेपन के कारण ये व्यक्ति दुखी होता है। हम कहीं दुखी हो रहा है जबरदस्ती अपनेपन से, या दृष्टिकोण की बात करते हैं, नए की बात करते हैं। नए किसका नाम, दृष्टि। नए शब्द का एक अर्थ कर सकते हैं हम दृष्टि। दृष्टि कैसी है, एक शब्द का सम्यक दृष्टि, एक था मिथ्या दृष्टि। वहां दृष्टि शब्द का अर्थ क्या था, श्रद्धा। वहां दृष्टि शब्द का अर्थ श्रद्धा था, और यहाँ नए के लिए जो दृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है वो दृष्टि कैसी है। ये दृष्टि मतलब एंगल, ये वो दृष्टि है जो वाक्य आप कभी कभी बोलते हैं, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। ये श्रद्धा की बात है यहाँ, नहीं नहीं नजरिए की बात है। आप कैसा देख रहे हैं, एक घटना को देखने का आपका नजरिया किस प्रकार का है। आप उसी चीज को किसी दूसरे प्रकार से देख सकते हैं, आप उसी चीज को किसी दूसरे प्रकार से देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे तो याद आता है महाभारत का वो प्रसंग जिसमें दोनों को बुलाया श्री कृष्ण ने, दुर्योधन को भी बुलाया और युधिष्ठिर को भी बुलाया। अर्जुन समझो, युधिष्ठिर समझो, एक ही भाई, युधिष्ठिर बड़ा भाई था ना, इसलिए युधिष्ठिर की बात करता हूँ। दोनों को बुलाया और दोनों को बुला करके कहा कि ये जो बंटवारा है ना, बंटवारा करना है मेरे को, तो एक तरफ तो मेरी पूरी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूँ, बोलो क्या मांगना है। दुर्योधन ने मांग लिया, बोले ये मांग लिया उससे पहले, नहीं पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं आया था, कोई बात नहीं, ये मांग ले, क्या मांगता है। बोले आप युद्ध लड़ोगे क्या, बोले युद्ध तो नहीं लड़ूंगा, युद्ध तो सेना लड़ेगी। बोले ठीक है, तुम सेना मेरे लिए और ये तुम्हारे लिए। अब देखो आप, वो सेना को तो मांग लिया क्या, और सेना के मालिक जो थे उसको नहीं माना। दृष्टि में क्या दिखाई दे रहा है, उसकी दृष्टि में संख्या दिखाई दे रही है क्या, उसको लग रहा है कि एक जहाँ होगा ये क्या कर लेगी अकेले। लेकिन भाई साहब वो जो सारथी बनकर के आगे घूमने वाले हैं, ये सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये चीज नहीं दिखती है। एक घटना इस प्रकार की घटी, दोनों को बुला करके और कहा उन्होंने कि जाओ दुर्योधन, दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं सबकी लिस्ट बना करके लाओ, ये लो कॉपी और ये पेन। दुनिया में जितने अच्छे लोगों की लिस्ट मिले सबकी लिस्ट कल तक कल आना, और अपने यहाँ जितने वो हम ये चाहते हैं अपने नगर में पूरा कोई एक अच्छी व्यवस्था कर ले तो खराब खराब लोगों को एक तरफ निकाल दें, अच्छे अच्छे लोगों को एक अलग कॉलोनी इस तरह से अपन सेपरेट कर दें तो फिर किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहे। तो दुर्योधन को कहा सारे अच्छे लोगों की लिस्ट बना करके लाओ, और युधिष्ठिर को कहा कि दुनिया में जितने बुरे लोग दिखते हैं सबकी लिस्ट बना करके लाओ। क्या हुआ होगा? दुर्योधन आए कहा बताओ भाई कौन कौन अच्छे लोग मिले तुम्हारे को, कौन अच्छे क्या बात करते हो, जितने मिला मैं सब कोई धोखेबाज है, मायाचारी है, किसी का गुस्सा तेज है, कोई बेईमान है, कोई कहता है कोई कहता है, सारी दुनिया ऐसी दिखाई दी मेरे को तो एक भी नहीं मिला मेरे को तो ये लोग कॉफी खा ली, सारे लोग बदमाश खराब बेईमान सब सब ऐसे दिखते हैं, क्या करो नहीं दिखते सब। इतनी देर में पीछे से युधिष्ठिर आ रहे थे, उनसे कहा लाओ भाई तुम्हारी कॉफी तो पूरी भर गई होगी। क्या हुआ कौन सी कॉफी भर गई, खाली है मेरी कॉफी तो क्यों क्या हुआ, सारी दुनिया में बुरे बुरे लोग हैं लिस्ट तो बताओ तुम्हारी, कि नहीं मुझे तो दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति दिखाई जिसे देखता हूँ उसमें अच्छाई दिखाई दिखती है, जिसे देखता हूँ उसमें गुण दिखाई देते हैं, जिसे देखता हूँ व्यक्ति सज्जन दिखाई देता है, सरल दिखाई देता है, उसमें दया दिखाई देती है, उसमें करुणा दिखाई देती है, उसमें प्रेम दिखाई देता है, उसमें वात्सल्य दिखाई देता है, सब अच्छे लोग हैं दुनिया में मैं किसका नाम लिखता, ये लोग कॉपी खा लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ओहो दुनिया तो वही है लेकिन जैसी जैसी वैसी, ये स्वरूप है। ये जैन दर्शन की प्रतिपादन शैली है भाई साहब, जिस प्रतिपादन शैली को नए कहकर के पुकारा गया है, ये प्रतिपादन शैली कहती है नजरिया है देखने का, आप वस्तु को कैसा देखते हो, आप आत्मा को कैसा देखते हो, आत्मा कहने पर आपको क्या दिखाई देता है ये देखना, शब्दों के प्रतिपादन की शैली वो नए है। एक देश देखना, एक एंगल से देखना, एक अंश से देखना वो नए कहलाता है, और पूरी तरह से देखना सर्वांगीण वो प्रमाण कहलाता है। सूत्र क्या है यहाँ, प्रमाण नये अधिगमे है, क्या है पुत्र, प्रमाण नये अधिगमे है, प्रमाण नये अधिगमे है, अधिगमे का मतलब तो होता है ज्ञान करना, और कैसे ज्ञान करना कि एक अंश से भी ज्ञान करना और पूरी वस्तु का भी ज्ञान करना, तो पूरी वस्तु का ज्ञान करना एट ए टाइम एट ए ग्लांस पूरा ख्याल में आया वो कहलाएगा प्रमाण, और जस्ट एक पॉइंट उसका हाईलाइट हुआ वो कहलाएगा नए। भाई साहब नए नहीं होता तो वस्तु का कथन नहीं हो सकता था। क्या मतलब, क्योंकि नए अपेक्षा फिर कहता है, अब अपेक्षाएं हुई नहीं तो सर्वथा हो जाएगा। बोलो मैं यदि ये बात करूं, समझ लीजिए भैया आपसे बात करूं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, बताओ बड़े हैं या छोटे हैं बताओ, अब अपेक्षा नहीं है नए नहीं है तो क्या होगा, जवाब नहीं दे सकते, फंस जाए उलझ जाए भाई साहब। मान लीजिए अपेक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है, अपेक्षा से आप कहेंगे कि इसकी अपेक्षा से या इनकी अपेक्षा से, पंडित जी पहले ये बताओ किसकी अपेक्षा से पूछ रहे हो, हमने आपसे पूछा नींबू कैसा होता है, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है पक्का, मेरे को बाजार से नींबू लेकर के आने में पहचानता नहीं हूँ, आपने कहा खट्टा होता है मैं कैसे लाऊंगा बाजार से, है कोई ऑप्शन, एक कराएगा कोई व्यक्ति मेरे को, अब बाजार जाकर के मैं नाम भूल गया, अब मैंने कहा वो खट्टा खट्टा था कुछ खट्टा बताएगा कुछ, बोलो क्या होगा, मैंने पूछा नींबू कैसा होता है आपने क्या जवाब दिया, मैंने कब पूछा था कि उसका स्वाद कैसा होता है, मैंने ये थोड़ी ने पूछा उसका स्वाद क्या, नींबू का स्वाद कैसा होता है, आपने स्वाद क्यों बताया, एंगल है स्वाद एक पक्ष है उसका, खटाई एक पक्ष है, सिर्फ एक पक्ष को देख करके नींबू का कथन करना ये एक पक्षीय कथन है, ये न्याय कहलाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन नींबू अकेला इतना सा नहीं है, एक छोटे से बच्चे से पूछोगे तो क्या पता गोल होता है, और जो बच्चा जो कलर सीख रहा है उस बच्चे से बात करोगे तो क्या पता है पीला होता है येलो होता है। नींबू कैसा होता है? येलो होता है, पीला होता है कि खट्टा होता है, कैसा होता है नींबू? बहुत सारे एंगल्स हैं उस नींबू को देखने के, लेकिन उन सब एंगल में से सिर्फ एक एंगल से देख करके जब कथन किया जाता है तो वो कहलाता है नारी। बता ना, दो तो क्या दुनिया, दो तो बताइए, और भी बहुत तरह के नए हो सकते हैं, निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, ज्ञान नये, शब्द नये, अर्थ नये, नैगम संग्रह व्यवहार, सूत्र शब्द समूढ़ एवं भूत, सात नये, प्रवचनकार परिशिष्ट में 47 नये, और इतना ही नहीं, जावधिया वहन वाहक अवधिया के होती नये वाता, गोमट पार और सम्मति तर्क, इन दोनों स्थानों पर कहते हैं जितने वचन विकल्प हैं उतने नये हैं। ये क्या मतलब कि जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें का मतलब घटना एक घटी, कल ब्रिटेन अलग हो गया, एक घटना घटी ना कि ब्रिटेन अलग हो गया, तो हर न्यूज़पेपर की, हर न्यूज चैनल की हेडलाइन अलग अलग थी, सब अलग अलग थी, बदला थे, बात तो वही थी, देखने का नजरिया अलग अलग था। ऐसे ही हम कह रहे हैं आत्मा तो एक ही है, उस एक आत्मा को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते, ये नए है। जीव तो एक ही है, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल क्षय द्रव्य जीव अजीव आस्त्र बंध संवर नजरा मोक्ष, लेकिन इनको देखने के एंगल, इनको देखने के दृष्टिकोण ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर ये अलग अलग दिखाई देते हैं। ख्याल में आई बात? दृष्टि बदलते ही दृष्टि बदल जाती है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की दृष्टि बदल गई है। कैसी दृष्टि बदल गई है? कि वो जगत के जीवों को जिनको आज तक दो इंद्रिय देखता था, जिनको पंच इंद्रिय देखता था, जिनको मनुष्य देखता था, जिनको त्रियंश देखता था, अब उन्हीं को वो भगवान देखता है, उन्हीं को वो जीव देखता है, उन्हीं को वो आत्मा देखता है। बोलो, दृष्टि आपकी दृष्टि बदल गई। किसी व्यक्ति के पास ऊपर यदि आपकी दृष्टि बदल जाए तो क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति को आप बहुत अच्छा समझते थे, अपना समझते थे, अब दृष्टि बदल गई, समझ में आ गया अपना नहीं है, दृष्टि बदलने की तो बात है और क्या है। अब कोई व्यक्ति ये मान करके चले किसी के पास में कितना भी अन्याय करता रहे, अत्याचार करता रहे, ये नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपने है, ये तो अपना ही है, वैसा भी एक लिमिट होती है किसी चीज की, नहीं है, दृष्टि बदल सकती है किसी भी की भी कभी भी, अब दृष्टि बदलेगी तो फिर क्या होगा? दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदली और दृष्टि बदल गई, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की दृष्टि बदल जाती है। यहां तो दृष्टि बदलने की बात नहीं कह रहे, यहां तो बदल बदल करके अलग अलग विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप को समझने की बात कह रहे। कभी आत्मा को ज्ञान के एंगल से देखेंगे तो अलग पिक्चर दिखेगी, कभी ज्ञान को दर्शन के, आत्मा को दर्शन के एंगल से देखेंगे तो अलग दिखेगा स्वरूप, कभी आत्मा को चारित्र के एंगल से देखेंगे तो अलग स्वरूप दिखाई देगा, दिखेगे नहीं तो अलग अलग स्वरूप दिखेगा, अलग अलग तरह से दिखता है, इसमें क्या है? लेकिन अलग अलग तरह से दिखने पर भी दिखा रहे हैं एक आत्मा को ही। जैसे मैं नहीं कहता हूं, कभी ऐसा पहले भी कहा होगा मैंने, एक मकान का फोटो लाने की कही मैंने आपसे, आपके मकान का फोटो तो लाना यार, मैं आपका मकान देख रहा है, मेरे को कहता है बहुत तारीफ सुनी है हरीश भाई, आपके मकान का फोटो चाहिए, आप ले आएंगे कल? ठीक है, आपने सोचा यार मकान की तारीफ बहुत सुनी है, फोटो ऐसे ही फ्रंट फोटो ले जाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, तो आपने चारों तरफ से फोटो निकाला और ला करके रखा कि पंडित जी मेरे मकान का फोटो, उनका अच्छा आपकी चार मकान है? नहीं पंडित जी एक ही है। मैंने कहा एक ही मकान है लेकिन फोटो तो चार है, ये चारों आपके हैं, अलग अलग लोगों के होंगे। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ये चार साइड से लिए हुए मकान है, जिस तरह से चार दिशाओं से लिए हुए मकान का पिक्चर अलग अलग दिशा से अलग अलग आता है। मकान एक, दिशा अलग अलग, फोटो अलग अलग, दिखेगा अलग अलग, मकान हुई बोलो। ऐसे कह रहे हैं एक आत्मा जिसे हमें देखना है, अलग अलग दिखेगा, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी अलग एंगल से दिखता है, कभी आत्मा अमूर्तिक दिखता है, कभी वही आत्मा असंख्यात प्रदेशी दिखता है, कभी वही आत्मा कोई और प्रकार से दिखता है। ये देखने का दृष्टिकोण है। इस नए कथन पद्धति में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहा, नए कथन पद्धति में, नयों की इस चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिमाग में रखनी होगी, वो क्या, कि नयों में मुख्यतः गौणता होती है। क्या क्या था, मुख्यतः गौणता, जिसकी चर्चा चल रही है वो मुख्य है और जिसकी चर्चा नहीं चल रही है वो गौण है। जो दिमाग में आ गया, जो उपयोग में आ गया, जो बात हाईलाइट हो गई वो मुख्य है। तो नए हमेशा हाईलाइट करता है इसी चीज को, और बाकी जो दूसरी बातें हैं वो सब बातें अपने आप गौण हो जाती है, गौण किया नहीं जाता, बस उसका विचार नहीं है, उसके बारे में ध्यान नहीं है। हमने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, हमने कहा मोहित, तो ऐसा कैसे आप हाईलाइट हो गए, बाकी सब गौण हो गए। जैसे जिसकी शादी होती है गीत तो उसी के गाए जाते, तो समय वही मुख्य है, कोई व्यक्ति ये कहेगी यार ये क्या सिस्टम है, ये क्या रिवाज, मैं कुछ समझ नहीं पाया आपके इस बेहोल जी को, किसी व्यक्ति ने पहले कभी देखा नहीं था बारात को, तो मूर्ख सारे बुजुर्ग लोग, बूढ़े बूढ़े लोग सब नीचे पैदल चल रहे हैं और जवान पट्टे को ऊपर बैठा रखता है, घोड़े पे बैठ के चल रहा है, शर्म नहीं आती इसको। अरे भाई साहब बात ऐसी नहीं है, बात तो ये है अभी वो मुख्य है, जो मुख्य होगा वो हाईलाइट होगा। शैली है ये जैन दर्शन की, इस शैली को समझे बिना, माने ये मैं तो कभी कहता हूँ ये लैंग्वेज है भाई साहब, ये लैंग्वेज है, ये शैली है, ये शब्द कुछ होते हैं, अभिप्राय कुछ होता है, ये बड़ी गजब की बात है। नए देखो और समझाऊं जैसे मैं इस चीज को आपको, तो मैं ये कह सकता हूं जैन शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे गए, जैन शास्त्र कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, पाली है, अर्धमागधी है, प्राकृत है, संस्कृत है, जर्मनी फ्रेंच वगैरह नहीं, इंग्लिश में नहीं, जैन आदर सुनो, सबके जवाब गलत है। जैन आगमों की भाषा न प्राकृत है, न पाली है, न संस्कृत है, न कोई भाषा नहीं है जैन आगमों की, तो कौन सी भाषा है, बोले तो एक भाषा है, उस भाषा को कहते हैं नाय। ये सारा जिनागम नयो की भाषा में लिखा गया है भाई साहब, प्राकृत भाषा में नहीं लिखा गया है, ये नये की भाषा होती है, है? हर जगह पर अपेक्षा है। जिस व्यक्ति को ये नये की भाषा आती हो वो व्यक्ति जनवाणी को सही रूप से पढ़ सकता है, और जिसको नये की भाषा नहीं आती हो वो भले संस्कृत का जानकार हो, भले प्राकृत का जानकार हो, अभ्रंश का जानकार हो, पाली का जानकार हो, और भाषाओं का जानकार हो, वो शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, उसका मर्म नहीं समझ सकता। भाषा के जानकारों के लिए नहीं है जनवाणी, क्योंकि तो जनवाणी की भाषा त्यागवाद है, जनवाणी की भाषा नाय है। वैसे तो प्राकृत भाषा में लिखे हैं, लैंग्वेज प्राकृत हो सकती है, लेकिन प्राकृत जानने वाले जनवाणी का मर्म नहीं समझ सकते, उसके लिए नई की भाषा समझनी पड़ेगी। बोले ये कौन सी भाषा होती है पंडित जी, हमारे समझ में नहीं आया ये कौन सी भाषा है, ये नई की भाषा कौन सी भाषा होती है, ये समझ में नहीं आया तुम्हारे नई की भाषा कौन सी होती है। देखो मैं बताता हूँ, जो भाषा कही नहीं जाती या जिस भाषा में शब्द कुछ कहे जाते हैं लेकिन उनके पीछे छिपा हुआ मर्म कुछ और होता है, उस भाषा को नाई की भाषा कहते हैं। हाँ, पहला ही था सम्यक दर्शन ज्ञान के प्राणी मोक्ष मार्ग है। ये चार प्राणी कहकर के मोक्ष मार्ग कह दिया, अब संस्कृत वाला तो कह देगा गड़बड़ है। सम्यक दर्शन का अर्थ वो कहेगा अच्छे से देखना, वो कहेगा नहीं यहाँ देखना नहीं है, यहाँ दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में है, विवक्षा लगानी पड़ेगी यहाँ। विवक्षा समझे बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझ लो आप। इसलिए अपेक्षा समझना जरूरी है। मैं कहता हूँ कभी कभी इस बात को समझाने के लिए, नए तो मैं बहुत जगह पढ़ाता हूँ, नयों की जब चर्चा चलती है तो मैं ये बात कहता हूँ। एक बार एक बालक घर पर देर से आया, छोटा बालक 15-16 साल का होगा, गरीब रात को घर पर देर से आया, अम्मा ने डांट दिया। कहाँ गया था? चला गया था, चला गया, बैठा रहना भाई। क्या कह दे रही है माँ? चले गया तू तो, एक से और दे क्या था, बैठे रहना वहीं पे। वो बच्चे कहते नहीं नहीं माँ अब नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं चले गया तू तो, नहीं नहीं माँ सॉरी अब नहीं जाऊंगा, आगे से नहीं जाऊंगा। देखो आप, माँ कह रही है चले जा और बच्चा समझ रहा है कि आगे से मत जाना। समझ में आ रहा है? भाषा क्या है, शब्द क्या है? अब मैं आपसे कहता हूँ हिंदी का ये वाक्य लिखो, चले जा और वहीं जाकर के बैठे रहना, आने की जरूरत नहीं है। इस वाक्य को लिखो और किसी हिंदी जानकार व्यक्ति से पूछो कि इस बात में माँ ने बच्चे से क्या कहा, बोलो इस वाक्य में माँ ने बच्चे से क्या कहा। तो व्याकरण हिंदी जानने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन बच्चा अपने माँ की कथन करने की शैली स्टाइल वो अच्छी तरह से समझता है कि माँ क्या कहना चाहती है। बस इस स्टाइल का नाम है लाया, विवक्षा समझता है। दुनिया की कौन सी डिक्शनरी में चले जाकर अर्थ ये होगा कि मत जाना, चले जा इसका अर्थ कौन सी डिक्शनरी में जरा गूगल करके तो देखो, चले जा इसका अर्थ कहीं मत जाना निकलता हो तो, लेकिन वो बच्चा चले जा इसका अर्थ क्या निकलता है, आगे से नहीं जाना। कैसे निकाला आपने ये अर्थ, ये बताओ ये अर्थ कहां से निकाला? वो माँ के पेट में बैठ के बात करता है, हृदय में बैठ के बात करता है, तो ये बात निकलती है। माँ का अभिप्राय क्या है, बस अभिप्राय समझने का नाम है नय। आप विवक्षा समझो, आप अभिप्राय समझो, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये कहने का क्या उद्देश्य था, ये बात कही क्यों गई है आखिर, समझ रहे हैं ये बात क्यों कही गई है। वो बच्चा कभी ऐसा नहीं करता, हंस तो लगता है यार, माँ बहुत खुश है कि ला माँ $50 और भेजे, एक और देगा तो आज तो बहुत खुश करिए, क्या होगा बताओ, क्या क्या पड़ेगा खेच के। नालायक समझ में नहीं आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं समझ में आ रहा तेरे, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि आप जाने के लिए कह रहे हो, लगता तो ये था कि आप मना करोगे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो कि तू समझता नहीं है। हर बच्चा अपने माँ से कथन करने की पद्धति को शैली को समझता है, हर बच्चा समझता है अपने माँ के कथन करने की पद्धति को शैली को। हम यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, हर बच्चा अपने माँ के कथन करने की शैली समझता है। हम भी बच्चे हैं, किसके, जिनवाणी माँ के, कि जिनवाणी हमारी माँ है, तो जिनवाणी की भी कथन करने की कोई शैली है। बार बार में हमारे सामने आकर के ये मत दिखाना कि सर आपने तो ये बताया था, ये देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये देखो ऐसी बात लिखी है, तो दूसरा व्यक्ति आकर के कहता है ये देखो इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, खबर से पता है हमारे को कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, ये हमारे को बराबर खबर है। लेकिन हम जो बात कहते हैं उस अपेक्षा से जब तक नहीं समझोगे तब तक आत्मा की अनुभूति ही नहीं होगी। लिखा कुछ होगा, भाव कुछ होगा, दोनों मुख्य करके समझना पड़ेगा भाई साहब। एंगल से समझना पड़ेगा आपको बात। समझना पड़ेगा निमित्त बाधान भी समझना पड़ेगा, निश्चय व्यवहार भी समझना पड़ेगा, विविध प्रकार की अपेक्षाएं भी समझनी पड़ेगी, मुख्य गौण करने की कला भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि ये मुख्य गौण करने की कला नहीं आई तो तुम्हें दर्शन नहीं होगा। चलो थोड़ी सी बात को गहराई की तरफ ले चले अपन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नए से होती है या प्रमाण से?
दोनों।
क्या प्रश्न क्या किया हमने यहाँ? क्या कहा? प्रमाण नए अधिगम है। बात को सम्यक दर्शन की करनी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नए से होती है या प्रमाण से होती है? प्रमाण किसे कहते हैं? पूरी वस्तु का ज्ञान वो प्रमाण है। और नए किसे कहते हैं? एक एंगल से देखना, उसका नाम नए है। तो बोलो, नए की जरूरत है कि प्रमाण की जरूरत है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? यदि आप ये कहते हो कि प्रमाण की जरूरत है तो फिर मैं कहता हूँ नए काय को पढ़ रहे हो जबरदस्ती, और यदि आप ये कहते हो नए की जरूरत है तो फिर मैं कहता हूँ प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बात और समझ लेना, प्रमाण के बिना नए सच्चे नहीं होते। क्या कहा? प्रमाण के बिना नए सच्चे नहीं होते। यही क्या बात हुई? ये बात ऐसी है कि जब तक आपको दूसरे एंगल की स्वीकृति नहीं हो तब तक एक एंगल से बात करना ये झूठा है। क्या अभी सम्यक दर्शन की बात करो आप, और सिर्फ एक एंगल से बात करो और दूसरे एंगल की खबर नहीं हो तो झूठा है। किताब अणुव्रति कौन होते हैं बताओ? किताब अणुव्रति तो वो होते हैं जो बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांच पापों का एक देश त्याग कर देते हैं, वे अणुव्रति होते हैं। सच्ची है कि नहीं बात? कि और मैंने और क्या यही होता है बिल्कुल कि नहीं? और भी बताओ तो सही, और क्या है अणुव्रत का स्वरूप? कि नहीं बताओ, कुछ नहीं होता। पांच पापों के एक देश त्याग करने को अणुव्रत कहते हैं, और हम अणुव्रत लेना चाहिए हमारे को, क्योंकि ऐसा शास्त्र ने कहा है। हमने कहा सुनो, एक एंगल पे देख रहे हो, झूठ कह रहे हो। क्या कह रहा हूँ मैं? झूठ कह रहे हो, क्योंकि दूसरे एंगल की खबर नहीं है। दूसरा एंगल क्या है कि दो कचाई चौकड़ी के अभाव के बिना अणुव्रत हो सकते नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्या है? अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा ना वस्तु को। अंदर में अनंतानुबंधी और अप्रत्यय खेनाग्रहण कचाई का अभाव हो, बाहर में पांच सातों का एक देश त्याग हो, इन दोनों के होने पर आत्म रमणता रूप शुद्धोपयोग दशा के साथ में वो अणुव्रत कहलाते हैं। अब आपको शुद्धोपयोग की खबर नहीं है, आपको दो कचाई चौकड़ियों के नाम पता नहीं है, और आप ये बात कहो कि हमारे अणुव्रत हैं, तो हम समझ लेंगे कि आपके कैसे अणुव्रत होंगे। किताब मेरे महाव्रत, क्या आप जानते हो महाव्रत किसे कहते हैं? किताब मैं मुनि, क्या आप जानते हो मुनि कैसे होते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। ये कैसे होते हैं? इतारा खरीदने छोड़ देते हैं तो मुनि हो जाते हैं। अरे भैया, धोखे में मत रहना। ये मुनि बना तो दुनिया को दिखाने के लिए है, मुनि बना अंदर में होता है, ये परिग्रह बाहर में छूटता है। अनुवृत्ति अंदर में होता है, उसका प्रदर्शन बाहर में होता है। मुनि अंदर में होते हैं, उसका प्रदर्शन बाहर में होता है। तो सिर्फ बाहर के पिक्चर खींचता है, ये गलत फहमी है, ये धोखा हो गया। सब एंगल से देखो पूरी तरह से। यदि प्रमाण से वस्तु को नहीं जानोगे तो नए से जो प्रतिपादन किया गया वो सारा का सारा प्रतिपादन झूठा हो जाए, गलत हो जाएगा। सम्यक दर्शन बोलो नए से होता है क्या प्रमाण से? प्रमाण से बहुत बहुत। अब मैं और बात कहूँ, समय सार कलश आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं अनुभव के काल में, उदयति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम। जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय न नय होता है न प्रमाण होता है। अरे साहब क्या कर रहे हो आप, जबरदस्ती हमारे दो घंटे बिगाड़ दिए। प्रमाण में अधिगम के चक्कर में ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना आपको कि आत्मा का अनुभव नहीं और प्रमाण से नहीं होता है। हम जबरदस्ती ये तो आउट ऑफ कोर्ट हो गई बात, प्रमाण और नये पे हमें कोई मतलब नहीं कि सुनो प्रमाण और नये की उपस्थिति में तो नहीं होता, लेकिन प्रमाण और नये के बिना भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव होता है तो न प्रमाण संबंधी विकल्प होता है और न नये संबंधी विकल्प होता है। जब आत्मा का अनुभव होता है उसके पहले की भूमिका में प्रमाण से वस्तु स्वरूप को जाना जाता है और नये से भी वस्तु स्वरूप को जाना जाता है। एक एक विवक्षा करके वस्तु स्वरूप को समझना ये नये का काम है, लेकिन जब अनुभव हो गए तब क्या करना, अब विकल्प तोड़ देना ये काम है। अच्छा बतलाओ मैं आपसे पूछता हूँ, खीर का स्वाद, हलवे का स्वाद, मिठाई का स्वाद, किसी भी वस्तु के स्वाद की बात करो, वो जो स्वाद है वो स्वाद कैसे आता है? मैं समझो तो खीर के स्वाद लेने की क्या विधि है ये बताओ। पहले तो खीर बनाएंगे, खीर का स्वाद लेने के लिए, खीर को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? खीर बनाने के लिए क्या क्या करेंगे? दूध उबालेंगे, चावल लाएंगे, मेवा होगा उसके अंदर, मीठा होगा उसमें, इलायची होगी उसमें, ड्राई फ्रूट होंगे, ये सब बहुत सारी चीजें होगी ना उसमें, तो बहुत तरह की चीजें होंगी उसमें। इसकी बात करें विकल्प खड़े नहीं होते, जब तक विकल्प है तब तक स्वाद नहीं है और जब स्वाद है तब विकल्प नहीं है। क्या कहा? जब तक विकल्प है, अरे समझ लो आप, ऐसा समझ लो $2000 का एक अच्छा सेट खरीद के लाए, $2000 ला जाता है सेट, अच्छा आ जाता हो नहीं आता हो? अभी नहीं खरीदा आपने? आ जाता हो? चलो सेट खरीदा, बहुत अच्छा दुकान पर, ये अच्छा, ये अच्छा, ऐसा ऐसा है, इसका डिजाइन अच्छी है, ये डिजाइन अच्छी है, ये इसमें ये कलर अच्छा लग रहा है, इसका ये अच्छा लग रहा है, नहीं मेरे को गोल्ड चाहिए, इसके अंदर ये चुभेगा, इसके अंदर अटकेगा, ये होगा, तो बहुत मगजमारी करके ले आ रहे इसको, और कितने पैसे खर्च किए हमने, अब कितने पैसे खर्च करके जो सेट खरीद करके लेकर के आए हैं, अब हम ये पूछते हैं अब उसको पहनने के बाद में क्या विचार करना, बोलो कि पहनने के बाद में ये विचार नहीं करना कि बहुत महंगा आ गया। यदि ये विकल्प दिमाग में होगा तो उस हार का प्रदर्शन के पैसा उसका स्वाद नहीं ले पाएगा, उसका एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो एंजॉय कब कर पाएगा? तो भूल जाओ उसको, ये सारे विकल्प महंगा है, ये सस्ता है, ये कितना लग रहा है, ये होना है, ये सारे विकल्प लेने से पहले करने के हैं, लेने के बाद में विकल्प करने का नहीं है, अब तो कर लिया खत्म। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या है, आत्मा में ज्ञान है कि दर्शन है, ज्ञान गुण ऐसा है, ज्ञान गुण ऐसा है, कमता गुण ऐसा है, जीवत्व शक्ति का ये काम है, चित्त शक्ति का ये काम है, गुण धर्म शक्तियों के संदर्भ में, बोले ये सारा क्या करना, बोले नयों के माध्यम से अलग अलग एंगल से उस आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने का प्रयास करना। तो फिर साहब इन्होंने इतनी हेल्प करी है इन नयों ने सम्य दर्शन की प्राप्ति में, आत्मा के स्वरूप को समझाने में, तो आत्मा के अनुभव के काल में रहने दो ना इनको थोड़ा बहुत, नहीं भाई साहब ये तो नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति ने हमारे को रास्ता बता दिया थोड़ी मेहरबानी करके, तो अब आप क्या चाहते हो उनको बिठाए रखे पकड़ के बैठ जाए? नहीं यार साहब आपके बहुत अरे, नहीं नहीं साहब आधी रात को आपने पता बता दिया, कोई नहीं मिलता था यहाँ, मैं तो भटकता रहता, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आपने बताया ही नहीं, आप खुद यहाँ तक छोड़ने के लिए आ गए, अब तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, जिसने रास्ता बतलाया है उसका काम रास्ते तक ही था, ये प्रमाण नया दिख जो है ये मार्ग है मंजिल नहीं है, नए विकल्पात्मक व्याख्या का नाम है और प्रमाण और पूरी वस्तु को जानने का नाम है। वस्तु को देखा, अलग अलग विवक्षाओं से देखा और उस वस्तु का निर्णय किया और जब निर्णय करके हमारा उपयोग अपने आत्म स्वभाव में लीन हुआ तो कहते हैं अब हो गई आत्मा की अनुभूति, फिर उसकी जरूरत नहीं है। काम हो जाने के बाद में जरूरत नहीं है, ऐसा मत समझना ताला लगाने के बाद में अब चाबी की जरूरत नहीं है। अब काम हो गया, अब क्या जरूरत भाई का खोलने के काम आएगी, वो चीज अलग है जिसकी कल बात की थी। यहाँ तो ये कह रहे हैं प्रमाण और नए वस्तु स्वरूप का अनुभव करने के लिए मार्ग में तो उपयोगी थे, मंजिल के प्राप्ति हो जाने के बाद में अब इनकी कोई उपयोगिता साधन है, साध्य नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के साधन है, सहयोगी है, तो करना निर्णय करना इन पद्धतियों से, नए पद्धति से, प्रमाण पद्धति से। प्रमाण और नए के बहुत भेद प्रभेद है, एक एक एंगल से देखना। निश्चय ने कहता है, शुद्ध निश्चय ने कहता है, अशुद्ध निश्चय ने कहता है आत्मा का स्वरूप, परम शुद्ध निश्चय ने कहता है। नयों का स्वरूप समझना, नयों का स्वरूप पढ़ना, कौन सा नय क्या बात कहता है। आत्मा कहीं गुण स्थानों से वर्णन मिलेगा, कहीं मारण स्थान से वर्णन मिलेगा, कहीं जीव समाज से वर्णन मिलेगा, कहीं जीव को इंद्रियों वाला कहा जाएगा, कहीं मनुष्य कहेंगे कि जीव कितने प्रकार के, कि दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। अब सभी कहेंगे जीव के कोई प्रकार नहीं होते, जीव के कोई भेद है, सब जीव एक समान है, तो फिर जीव के दो भेद, संसारी मुक्त। इस तरह से सावर कहेंगे, दो इंद्री पंचेंद्री कहेंगे, ये सब क्या किया आपने, भेद। जितने भेद हैं वो सारे के सारे भेद अपेक्षाओं से किए गए भेद। तो प्रमाण वस्तु, पूरी वस्तु और नए एक एंगल, और एक एंगल में बाकी सब एंगल क्या है, गौण। गौण करना अभाव नहीं, नए दूसरे विषयों को गौण करता है, समझ रहे हैं आप, अभाव नहीं। मैंने आपको देखा तो आप मुख्य हो गए, तो आपके अलावा और सबको नहीं देखा तो बाकी सब गौण हो गए। जिसे देख रहे हैं वो मुख्य है, और जिसे नहीं देखा वो गौण। बस गौण करना है, ये मुख्यता गौणता तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखो आप जैसे ये जो टीवी चैनल वाले होते हैं, एड एजेंसी वाले, एडवर्टाइजमेंट जो दिखाते हैं, वो सब जानते हैं कैसे मुख्य हाईलाइट करना है। उनको यदि मान लीजिए 10 सेकंड का एड देना है तो 10 सेकंड में अपनी चीज को हाईलाइट करते हैं। यदि उनको ये दिखाना है कि निर्मा निर्मा निर्मा, बस फिर वो निर्मा निर्मा की बात करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि सर्फ अच्छा नहीं है, सर्फ अच्छा नहीं है, कि सर्फ अच्छा नहीं है, कहोगे तो सर्फ हाईलाइट हो जाएगा भाई साहब। समझ में आ रही है बात, आप दूसरे की बात नहीं करें, आप दूसरे की चर्चा नहीं करें, इसका नाम है उसे गौण करना। गौण कैसे होता है, गौण करने की विधि क्या है, उसकी तरफ नहीं देखना, इसका नाम गौण करना है। उसकी बात नहीं करी हमने, उसकी चर्चा नहीं करी, वो चीज गौण हो गई। अब ये कह रहे हैं दुनिया से पार होने का उपाय क्या है, रोक्त होने का उपाय क्या है। तो कहा सारी दुनिया जैसे की तैसे बनी रहे, परिवार जैसे का तैसे बना रहे, शरीर जो का त्यों बना रहे, लेकिन होगा क्या कि हमारी दृष्टि में वो सब गौण हो जाए और त्रिकाली के रूप मुख्य हो जाए। बन गया कि नहीं, नहीं साहब मैं क्या करूं, ये सामने है, इनको तो हटाना पड़ेगा। हटाना नहीं है, तेरी दृष्टि से हटाना है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है भाई साहब, मुख्यता और गौणता की जो ये फैसिलिटी है, चित्तशुद्धि की फैसिलिटी। ये भेदों को गौण करो और अभेद पर दृष्टि करो, विषयों को गौण करो, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेदों को गौण करो, अलग अलग एंगल्स को गौण करो और त्रिकाली को मुख्य करो। ये कोई अद्भुत बात है, ये बात जैन दर्शन में दुनिया के किसी दर्शन में नहीं मिलेगी। ये मुख्यता गौणता की पद्धति, नित्यता और अनित्यता दोनों पक्ष वस्तु में मौजूद है, अनित्यता को गौण करो और नित्यता को मुख्य करो। समझ में आ रही है, आत्मा में विकार भी है और आत्मा निर्विकारी भी है, दोनों चीजें हैं आत्मा में, विकार भी है और निर्विकार स्वभाव भी है। अब क्या करना बोलो, निर्विकार को मुख्य करो और विकार को मान करो। तो पूरी दुनिया में ये पद्धति है, औरों के अंदर दोष भी होंगे, दोषों को गौण करो और क्वालिटीज को हाईलाइट करो, बस व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति में जो दोष है उन दोषों को गौण करो और जो गुण है उनको हाईलाइट करो। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा की अनुभूति का ये मार्ग है, आत्मा की अनुभूति की ये विधि है, ये प्रोसेस है आत्मा की अनुभूति के लिए। यदि इस प्रोसेस से चलते हैं तो आत्मा की अनुभूति होती है। कौन से प्रोसेस से? जानो सबको, पहले सब एक एक चीज को गहराई से जानो, जीव क्या है, उद्गल क्या है, सब धर्म ग्रंथ को जाना, छहों द्रव्यों को जाना, उनके गुणों को जाना, सामान्य गुणों को जाना, विशेष गुणों को जाना, उनकी क्रियाओं को जाना, परमात्मा को जाना, उनके द्वारा बतलाए हुए मार्ग को जाना, फिर वो आत्मा कहता अमूर्ति कहता अमूर्ति किस अपेक्षा से है, मूर्ति भी कहा है शास्त्रों में आत्मा को, पता है शास्त्रों में आत्मा को मूर्तिक भी कहा है अमूर्तिक भी कहा है। तो मूर्तिक क्यों कहा है? शरीर सापेक्ष, कर्म सापेक्ष मूर्तिक है। और अमूर्तिक कैसा है? असंख्यात प्रदेशी कहता है, क्षेत्र अपेक्षा से कहता है, काल अपेक्षा से कहता है, द्रव्य अपेक्षा से कहता है, भाव अपेक्षा से कहता है, विशेष गुणों की अपेक्षा से कहता है, सामान्य गुणों से होंगे तो कैसा मिलेगा, शक्तियों की अपेक्षा से कैसा मिलेगा दिखेगा, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों को देखेंगे तो कैसा दिखेगा। बहुत तरह के एंगल से देखो, जानो, जांच पड़ताल करो। जैसे आप करते हो ना, एक गाड़ी खरीदनी है तो 10 लोगों से पूछते हो, जिन्होंने खरीदी है उनसे पूछते हो, 10 शोरूमों के ऊपर उसके रेट ट्राई करते हो, फिर उसकी क्वालिटी देखते हो, फिर उसके फीचर्स देखते हो, फिर उसका कलर देखते हो, कितनी तरह की चीजें देखते हो आप उसमें, तब जाकर के आपको निर्णय होता है कि मुझे ये पसंद है। ऐसे ही हम आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आपका जो आत्मा है, जब तक आप उसकी क्वालिटी गुण धर्म आदि के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये कैसे होगा कि आपको आत्मा पसंद है। इसलिए प्रमाण और नयों के माध्यम से यदि हम आत्मा को गहराई से जानेंगे तो आत्मा की अनुभूति संभव हो पाएगी। हम सभी प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जानते हुए आत्मा के अनुभव रूपी मार्ग को प्रशस्त करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें। इसी मंगल भावना से मैं बात करेंगे रामदेव।